जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जन गावे।
नर नारायण
मिलकर भगवद गीता जन गावे। जय जय भारत पंचम वेद सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भरत वंश का गौरव वर्णन।
भीष्म पितामह व्रत परिपालन।
भीष्म पितामह व्रत परिपालन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
भक्त विदुर का पवित्र जीवन।
हरी सभा में पांचाली
सर्वशास्त्र
में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे।
सर्वशास्त्र में वैशंपायन मुनि हरि यश गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
नल दमयंती सुरम्य वार्ता।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
गुरुकुल कलह भयानक गाथा।
विपदाओं में श्री हरि गाथा।
विपदाओं में श्री हरि गाथा।
पतिव्रता सावित्री यम को जीत कीर्ति पावे।
पतिव्रता सावित्री यम को
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। धर्म राजा का धर्म पालन।
धर्म राजा का स्वधर्म पालन।
भीमार्जुन का दुष्कन कंकन।
भीमार्जुन का दुष्कन कंकन।
अभिमन्यु का रोग विभेदन।
अभिमन्यु का रोग विभेदन।
हरि सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
हरि सभा में पांचाली पर कृष्ण कृपा होवे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे।
जहाँ धर्म है कृष्ण वही है,
धर्म है कृष्ण वही है,
सत्य धर्म की सदा विजय है,
सत्य धर्म की सदा विजय है,
यही सिखावत व्यास देव है,
यही सिखावत व्यास देव है,
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे,
सज्जन संकट सागर लांघे सुख शांति पावे,
भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण,
पाप मुक्ति व्यामोह निवारण,
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन,
पुण्य विवर्धन कविवर जीवन,
वेद सार संताप विनाशन,
वेद सार संताप विनाशन,
श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे,
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 भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे,
नर भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरनर मुनि गावे,
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 कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम जगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी चैतन्यमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च तथा त्वमेव
त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव
सेवन्ति कामकुलजं पटपाटराज्यै पुन्नागजाति गर्वीरसालपुष्पै
बिल्वप्रवालशीतलवर्णरीभि
स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे
प्रसीद अधरम मधुरम वदनम मधुरम,
अधरम मधुरम वदनम मधुरम,
नयनम मधुरम हसितम मधुरम,
नयनम मधुरम हसितम मधुरम,
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं,
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं,
मधुराधिपतिरखिलं मधुरं,
मधुराधिपतिरखिलं मधुरं,
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्,
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्,
वचनं मधुरं चरितं मधुरं,
वचनं मधुरं चरितं मधुरम्,
वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं वलितं मधुरं,
वचनं मधुरं वलितं,
चलितम् मधुरम् भ्रमितम् मधुरम्
चलितम् मधुरम् भ्रमितम् मधुरम्
मधुराधिपते रखिलम् मधुरम्
मधुराधिपते रखिलम् मधुरम्
मधुराधिपते रखिलम् मधुरम्
मधुराधिपते रखिलम् मधुरम्
वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरौ सत्यं मधुरौ
नृत्यं मधुरौ सत्यं मधुरौ
मधुराधिपते रखिलं मधुरौ
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
गीतं मधुरं गीतं मधुरं
गीतं मधुरं गीतं मधुरम्
गीतं मधुरं गीतं मधुरं
गीतं मधुरं गीतं मधुरं
भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं
भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
करणं मधुरं शरणं मधुरं
करणं मधुरं शरणं मधुरं
करणं मधुरं शरणं मधुरं
करणं मधुरं शरणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं
वमितं मधुरं शमितं मधुरं
वमितं मधुरं शमितं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
मधुरं
मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधि पठे रखिलम मधुरम
मधुराधि
पठे रखिलम मधुरम
गोपी मधुराली मधुरा
गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा
युक्तम मधुरम
मोक्तम मधुरम
मधुरम
मधुरम शीर्षम मधुरम
मधुराधि पते
रखिलम मधुरम
मधुराधि
पते रखिलम मधुरम
मधुरा
गावो मधुरा
गोपा
मधुरा गावो मधुरा
जय श्री मधुरा
जय श्री मधुरा
मधुरम
मधुरम बलितम मधुरम
मधुराधि पते
रखिलम मधुरम
मधुराधि
पते रखिलम मधुरम
मधुराधि पते रखिलम
मधुराधि पते रखिलम मधुरम मधुराधि पते रखिलम मधुरम मधुराधि पते रखिलम मधुरम
मधुराधि पते रखिलम मधुरम
मधुराधि पते रखिलम मधुरम मधुराधि पते रखिलम मधुरम
गोपाल कृष्ण भगवान की
जय
ज्ञानेश्वर महाराज की
जय
सद्गुरु देव की
जय
वृंदावन बिहारी लाल की
जय
गंगा माता की
जय
गौ माता की
जय
भारत माता की
जय
वेदव्यास भगवान की
जय
शुकदेव भगवान की
जय
महर्षि वाल्मीकि भगवान की
जय
देवर्षि नारद भगवान की
जय
ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की
जय
ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की
जय
नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव
नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्याम श्रुति मार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि मे सदा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्य सकल्लोलाम् शिवशक्त्यैक रूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अधिरोहृतं मातर गच्छावस्वगृहानिति एवोक्त्वा तु भीष्मस्तां प्रथमारोप्य भामिनीम् आगम्यहास्तिनपुरम् शान्तनो सन्निवेदयत् तच्छ्रुत्वा दुष्करं कर्म कृतं भीष्मेण शान्तनुः। आनंदकंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन महाराज भगवान वेदव्यास महर्षि महाराज जन्मेजय और अन्य समस्त उपस्थितों के सामने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। अत्यंत बड़ा दुष्कर कार्य राजर्षि भीष्म के द्वारा किया गया। देवव्रत अब भीष्म कहलाने लगे। महाराज शांतनु इससे अत्यंत अभिभूत होकर के उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। कल जाते जाते हम लोगों ने एक बात विचार के लिए छोड़ दी थी। शांतनु के आशीर्वाद में इतना बड़ा बल कैसे आ सकता है? इच्छा मृत्यु का वरदान देने जितना बड़ा वर जितना बल शांतनु जैसे महापुरुष के आशीर्वाद में आया, इसके कारण ऐसे हैं। पहली बात, शांतनु स्वयं पूर्व जन्म के अत्यंत अच्छे एक थोड़े बहुत सिद्धि प्राप्त पुरुष रहे हैं। शांतनु का अर्थ ही ऐसा है, उनमें बचपन से एक सिद्धि थी और वह ऐसी थी कि यदि किसी को ज्वर हुआ है, यदि किसी को कोई वेदना है, यदि किसी को कोई कष्ट है, वो केवल अपने हाथ का स्पर्श कर देते थे तो सामने वाले का ज्वर शांत हो जाता था। तो थोड़े उपासक तो वे रहे ही है, पहली बात। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फल जो भीष्म को प्राप्त हुआ, यह मूलतः हमारे शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने का परिपाक है। हम लोग इस बात को सुनते हैं, हमारे यहां पर शास्त्रकारों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि आदि। अब मां कोई देवता वैसे नहीं होती है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि मां को देवता के समान मानो। कभी कभी पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मेरे पिताजी तो गंवार हैं, मैं इतना अच्छा आचरणशील व्यक्ति हूं और मेरे पिताजी तो दिन भर बीड़ी फूंकते बैठते हैं। अब हमारे देश में ऐसा रहा भी होगा, तो मेरे पिताजी का आदर करने से मुझे क्या मिलने वाला है? यहां पर एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, कोई पिता कैसा है और कोई मां कैसी है, उनका तप उनका पुण्य प्रभाव कितना है, इस बात का तो अपना महत्व है ही। लेकिन वे कुछ भी नहीं हो, आपका व्यक्तित्व उनसे कितना भी श्रेष्ठ भी हो, तब भी जब हम अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उस समय हमें जो आशीर्वाद अथवा कृपा प्राप्त होती है वो पिताजी की नहीं होती, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसमें भगवान मूल हेतु है और इसलिए अंतकरण में जिसके अपने पिता के प्रति, अपनी मां के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति जितना जैसा आदर होगा उतना फल उसको मिलता है। ये तो भगवद गीता का सिद्धांत है, यो यश्रद्धस्य एव सः, जिसका जैसा भाव होगा, जिसका जैसा अंतकरण में विश्वास होगा उतना फल उसको देने के लिए शास्त्र प्रतिबद्ध है। आपके पिताजी ने तब किया कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती नहीं, पिता का पद ही महत्वपूर्ण है। और शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण भगवान को कृपा करते हैं, इतना ध्यान में लेना चाहिए। स्वयं महाराज शांतनु का द्वितीय गृहस्थाश्रम आरंभ होता है और इस द्वितीय गृहस्थाश्रम में स्वयं शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद है और छोटे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य है। वीरश्च तत शांतनमो धीमान सत्यवत्याम अजायत, धीरश्चित्रांगदो नाम वीर्यवान पुरुषेश्वर अथा परम महेश्वासम सत्यवत्याम सुतम प्रभु विचित्र वीर्यम राजानं जनयामास वीर्यवान। महाराज शांतनु और भगवती सत्यवती माता, इनके दो बालक हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य। अब धीरे धीरे क्रमशः महाराज शांतनु वृद्धापकाल की ओर भी बढ़ रहे हैं और हो ऐसा गया जब ये दोनों बालक छोटे छोटे हैं, शांतनु की अवस्था भी बहुत हो गई थी, शांतनु का निधन हुआ। महाराज शांतनु शांत हो गए, प्रश्न खड़ा ये हो गया अब सिंहासन पर किसको बैठाया जाए। चित्रांगद बड़े तो है लेकिन बड़े होने पर भी अभी युवावस्था में प्रवेश किया हुआ वह इमैच्योर बालक है, दिल्ली के शहजादे जैसा नहीं है, अवस्था में छोटे हैं, इतनी बात है। भीष्म ने कहा इसमें कोई प्रश्न क्या है, राज्याभिषेक उन्हीं का होगा। चित्रांगद का राज्याभिषेक किया गया। वस्तुतः चित्रांगद बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े शूर तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखने का सामर्थ्य संसार में किसी का इसलिए नहीं था कि सबको पता था सिंहासन पर कोई भी हो उस सिंहासन की रक्षा के लिए जो भीष्म खड़े हैं उन भीष्म के साथ टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय जीवन आदर्शों में भीष्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भीष्म स्वयं अपनी प्रतिज्ञा से आजीवन तस से मस नहीं हुए, कमिटमेंट। देखो आज हमारे सामाजिक जीवन में जो बातें नष्ट हो रही है ना, उसमें एक बात है निष्ठा, कमिटमेंट। मैं एक बात का मैंने स्वीकार किया, मैं आजीवन उसके साथ या जो मेरा कार्यकाल होगा उतने समय तक तो भी उसके साथ पूरी तरह समर्पित रहूं, इस प्रकार की भावना अंतकरण में रखना यह एक अत्यंत बड़ी बात मानी जाती थी। धर्म की दृष्टि से इसका स्थान बहुत बड़ा है। बहुत पहले मैं कभी राजस्थान की गौरव गाथा ऐसी व्याख्यानमाला दिया करता था। चित्तौड़गढ़ में आपने पन्ना ढाई का कभी नाम सुना होगा, राजकुमार को मारने के लिए शत्रु आया, मैं ढाई हूं, दाई हूं, राजकुमार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अब रक्षा करना कठिन लग रहा है, अपने पुत्र को उसके स्थान पर सुला करके राजकुमार को बचाने वाली पन्नाधाय, ये कैसी निष्ठा का प्रतीक है। मनुष्य छोटा है चाहे बड़ा है, निष्ठा उसके जीवन को तेज लाती है। भीष्म तो वैसे भी अत्यंत महान है, भीष्म की संपूर्ण निष्ठा आजीवन लोगों के द्वारा किए गए कलंकों को झेल करके भी हस्तिनापुर के सिंहासन की मैं सेवा आजीवन करूंगा, यह बात जो उन्होंने स्वयं कही उसको अंत तक निभाया। अब इसमें पुनः आगे चलकर के हम देखेंगे, इसका विश्लेषण करते समय उनकी भूल कहां हुई, हमारी दृष्टि से या कृष्ण की दृष्टि से। लेकिन भीष्म की एक विशेषता है, उनके शौर्य के सामने सभी लोग नतमस्तक थे, इसलिए सिंहासन के ऊपर चित्रांगद है, रक्षा भीष्म कर रहे हैं, राज्योत्तम चल रहा है। भीष्म केवल रक्षा नहीं कर रहे हैं, राज्य की व्यवस्था भी देख रहे हैं। लेकिन एक नाजुक क्षण आया, ऐसा हुआ चित्रांगद नाम का ही एक यक्ष था और उसके साथ इस चित्रांगद का हो गया वैर। अब यह वैर चलता रहा, वैर के चलते हुए चित्रांगद यक्ष इस चित्रांगद राजा को मारने का मौका ढूंढ रहा है। गड़बड़ की बात एक बार ऐसी हो गई, ये चित्रांगद महाराज हस्तिनापुर के राजा कुरुक्षेत्र गए हैं, भीष्म उस समय उनके साथ में नहीं है, और इस बात को देख करके चित्रांगद राम के यक्ष ने वहां पर उसके ऊपर आक्रमण किया और उस युद्ध में चित्रांगद राजा मारे गए, चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब चित्रांगद की मृत्यु होने के पश्चात विचित्रवीर तो बहुत छोटा है, लेकिन भीष्म ने साहस के साथ उसका राज्याभिषेक पुनः कर दिया। विचित्रवीर का राज्याभिषेक हुआ, भीष्म ने उससे कह दिया कि देखो चित्रांगद ने जिस प्रकार का खतरा मोल लिया वैसे मत करना, मेरे बिना कहीं नहीं जाना, या तो यहां रहना या जहां जाना है वहां पर मुझे लेकर के चलना। अब ये विचित्रवीर बालक सा है, सत्यवती माता बड़ी चिंता करती है। सत्यवती माता ने भीष्म से कहा, देखो हमारे वंश में एक बड़ी समस्या है, पुरुषों की कमी है, राज्य का उत्तराधिकारी हम लोगों को जल्दी चाहिए, इसलिए इस विचित्र विधि का विवाह तुम जल्दी कर लो। भीष्म ने कहा कोई बात नहीं। एक बार वार्ता आई, काशीराज की तीन कन्याओं का स्वयंवर है, काशी के राजा की तीन कन्याएं, तीनों बहनें अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर निश्चित हुआ है। बड़े भाई चित्रांगद अविवाहित ही चले गए, उसका तो विवाह हुआ ही नहीं, गंधर्वराज चित्रांगद से वो मारा गया, विचित्रवीर का विवाह होना है, अवस्था उसकी थोड़ी है, 20-22 वर्ष का बालक है। भीष्म ने विचार किया, कुछ तो भी सोचा, और काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म जाकर के पहुंचे। अब इस अवस्था तक भीष्म बड़ी आयु के हो चुके थे, शौर्य की दृष्टि से भीष्म का नाम सर्वत्र था, उनके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण भी उनका नाम सर्वत्र आदर से लिया जा रहा था। ऐसी अवस्था में प्रौढ़ावस्था की ओर झुकने वाले भीष्म स्वयंवर में काहे को आए हैं, भीष्म के सामने बोलने की किसी की हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन वहां पर बैठे हुए छोरे सारे कानाफूसी करने लगे, अरे विवाह न करने का पछतावा हुआ होगा, दिल्ली से विवाह करने की इच्छा हुई होगी, अब देखो बाल पकने लग गए हैं और स्वयंवर में आए हैं। भीष्म स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है, और श्रेष्ठ महापुरुष कभी भी अपने मार्ग से चलते हैं, संसार में अनेक बातें चलती रहती हैं, सब बातों की ओर ध्यान देते रहेंगे और सब छोटी मोटी बातों का उत्तर देते रहेंगे तो आपका जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा। भीष्म शांति से बैठे, सारी बातों को उन्होंने अनदेखी कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब स्वयंवर के लिए तीनों कन्याएं जब आई, हमारी यहां ये पद्धति थी, तीनों कन्याएं मंच के ऊपर आई,
घोषणा की गई कि तीनों कन्याएं अपनी इच्छा से अपने लिए पति का चयन करेगी। यहां पर आमंत्रित सारे राजा राजकुमार इनका परिचय दिया जाएगा और उसके पश्चात यह कन्याएं जिनको चाहेगी उनको अपने पति के रूप में वरण करने के लिए स्वतंत्र है। घोषणा हुई और भीष्म मंच के ऊपर जाकर खड़े हुए सभी लोगों की ओर देखा और कहा इन तीनों कन्याओं को मैं ले जा रहा हूं, यदि आपके घर में कोई अमंगल न हो ऐसा लगता हो तो चुपचाप चले जाइए और यदि आपको अपने प्राणों की परवाह नहीं हो तो मुझे रोकने का प्रयास कीजिए। ऐसी गंभीर वाणी में भीष्म बोले हैं, सब थोड़े स्तब्ध रह गए और उसी समय भीष्म ने उन कन्याओं को देख करके कहा चलो रख बैठो। अब जिसकी बात को सुनकर के सामने वाले सारे क्षत्रिय भी चुपचाप बैठे हैं उसकी वाणी में दम क्या होगा, ये तीनों कन्याएं बेचारी छोरियां ये चुपचाप रथ की ओर चली। तीनों जाकर के रथ में जब बैठ गई, बीच पर जाकर के रथ में भी बैठने वाले हैं, कुछ लोगों को अब थोड़ी सी चेतना हुई, अरे ये गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बुड्ढा तीनों कन्याओं को कहां ले जा रहा है, चलो चलो। अब जैसे तैसे कुछ तैयार हुए, बीच में सबसे कहा देखो मैं चाहता नहीं कि इस विवाह के मंडप में आपकी लाशें पड़े, इसलिए आपको अभी बोल रहा हूं लौट जाओ। अब वे तो सब बाकी राजा लौट गए, एक राजा लौटा नहीं, उसका नाम है शाल्व। ये शाल्व स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आया। इसका कारण यह था, ये शाल्व और अंबा इन दोनों का आपस में विचार हो गया था। अंबा की इच्छा थी कि वह शाल्व को ही माल्यार्पण करती, लेकिन बीच में यह घटना घट गई, शाल्व स्वयं भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए। भीष्म के सामने ये छोरे क्या होते थे, भीष्म का पराक्रम अद्भुत है। भीष्म ने खटाखट शाल्व के घोड़ों को मारा, सारथी को मारा, रथ को तोड़ा, उसके शस्त्रों को तोड़ दिया, उसको धूल में नीचे गिरा दिया और कहा बच्चन जी नहीं चाहता हूं कि तुम यहां पर मारे जाओ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, चले जाओ। सबके सामने धूल चाट करके शाल्व को भीष्म ने पराभूत कर दिया। कन्याओं को लेकर के भीष्म चले गए। भीष्म ने लाकर के इन तीनों कन्याओं को सत्यवती माता के सामने खड़ा कर दिया। मां विचित्र वीर्य का विवाह जल्दी हो ऐसी तुम्हारी इच्छा थी और अपने घर में पुत्र संतति की कमी है जो तुमने कहा था, इसलिए मैंने एक नहीं तीन कन्याएं लाई है, अब इनकी रक्षा करो और योग्य मुहूर्त देख करके विवाह का विधान करो। भीष्म ने स्वयं उन तीनों कन्याओं को सत्यवती माता को सौंप दिया। अंबा अंबिका अंबालिका ये तीनों कन्याएं सत्यवती माता के पास सुरक्षित हैं और योग्य मुहूर्त देख करके विचित्र वीर्य के साथ इन तीनों का विवाह होना है। इसके अंतराल में जो समय गया उस समय में बड़ी कन्या जो अंबा थी, अंबा ने सत्यवती माता से एकांत में कहा मां कुछ अपने मन की बात आपके साथ मैं करना चाहती हूं। मां ने कहा बोलो बिटिया। तो अम्मा ने कहा मां क्षत्रियों के रिवाज के अनुसार जब हम लोगों को यहां पर जीत करके लाया गया है तो ये तो बात तय है कि हमारा विवाह जैसे आप चाहेगी वैसे होगा, किंतु आपने जिस वात्सल्य से हम लोगों को अपने पास रखा है आपके स्वभाव को देख करके मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं। मैं पहले से शाल्व में अनुरक्त हूं, मेरा मन शाल्व में लगा हुआ है, मैं शाल्व का ही वरण करना चाहती थी, शाल्व को इस बात का पता भी था, इसीलिए शाल्व ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन उनका पराभव कर दिया गया। मां केवल एक प्रश्न है, जिस कन्या का मन किसी अन्य पुरुष की ओर गया हुआ हो, ऐसी कन्या को आप अपने घर में बहू बना करके रखना चाहेगी कि उसे उसके मन के अनुसार कुछ करने देगी? ये जब उस अम्मा ने कहा तो सत्यवती माता ने कहा, बेटा ये क्या हो गया? सत्यवती ने भीष्म को बुलाया, कहा ये क्या हो गया, तुमने इसे क्यों लाया? इसके मन में जब किसी अन्य के गले में माल्यार्पण करने की बात पहले से निश्चित थी, तुमने इसे क्यों लाया? भीष्म ने कहा, यह बात इसने मुझे बताई होती तो मैं लाता नहीं, यह इसने मुझे बतलाई नहीं। तो सत्यवती माता ने उससे पूछा, बेटे तुम आज ये बात बोल रही हो तो पहले तुम्हें बतला देना चाहिए था ना। अम्मा ने कहा, मां सारा वातावरण ऐसा था और हम इतनी डरी हुई थी कि इनके सामने कुछ बोलना हमारे लिए संभव नहीं था। नाउ सी हाउ सर्कमस्टांस वर्क्स। कभी कभी मनुष्य के जीवन में प्रसंग ऐसे आते हैं कि इसका दोषारोपण किसके ऊपर किया जाए यह निश्चित कर ही नहीं सकते हैं। अम्मा का प्रकरण इस सारी बात में एक विचित्र कॉम्प्लिकेशन का प्रकरण है। इसमें अम्मा का दोष नहीं, इसमें भीष्म का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है। अब घटना तो ऐसी घटी, अब क्या किया जाए? देखिए हस्तिनापुर की पद्धति, मंत्रियों ने, सत्यवती माता ने और भीष्म ने मिलकर के तय किया कि अम्बा को आदर के साथ वो जहां चाहेगी वहां पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। हमारा कर्तव्य यह है। अम्बा से पूछा गया, अम्बा ने कहा, मैं काशी नहीं जाना चाहती, मैं शाल्व के पास जाना चाहती हूं। कहा, कोई बात नहीं। उसके साथ सैनिक दिए गए, वृद्ध ब्राह्मण दिए गए और अम्बा को भेज दिया गया। अब शाल्व ने उसका स्वीकार आगे किया नहीं और उसका जीवन जटिल बन गया, एक दूसरी बात है, ये पश्चात की बात। लेकिन अब उधर जाएंगे तो और बहुत समय जाएगा। अम्मा को भेज दिया। अंबिका और अंबालिका, इन दोनों का विवाह विचित्र विधि के साथ योग्य मुहूर्त देख करके संपन्न हुआ। ताभ्याम सहसमा सप्त विहरन पृथ्वीपति विचित्र वीर्यस्तरुणो यक्ष्मण समगृहत सुरदाम यतमानाप्तैः। विचित्र वीर्य तरुण है, अब दो पत्नियों का पति है। जो विवेक भीष्म में है, जो संस्कार भीष्म के हैं, जो प्रबुद्ध दृष्टिकोण भीष्म का है, वो इसका कैसे होता? विचित्र वीर्य तो अविवेक से इन दोनों पत्नियों के साथ इतना रममाण हो गया, इतना रममाण हो गया, सिंहासन पर जाकर के बैठने वाली कठपुतली के अलावा उसकी कोई इमेज नहीं रही। और ऐसी अवस्था में उसको राज यक्ष्मा क्षय रोग ने ग्रस्त कर लिया, टीबी उसको हो गया। अब यक्ष्मा हुआ, चिकित्सक बहुत थे, उन्होंने चिकित्सा की, चिकित्सकों की चिकित्सा अच्छी रही होगी। भारत देश के चिकित्सकों की चिकित्सा बहुत अच्छी होती थी। आपको लगता है भारत देश में प्राचीन काल में क्या चिकित्सा रही होगी और क्या शिक्षा रही होगी? ये सारा है ना, हमारे देश को मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा अंग्रेजों ने जो प्रयास किया और जिस प्रयास को अगली सरकारों ने चलने दिया, इसका परिणाम है। इस देश की चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी थी, इस देश की कला, इस देश की शिक्षा बहुत अच्छी थी। कितनी बढ़िया शिक्षा इस देश में थी, इसका सुंदर वर्णन गांधी जी के एक अनुयायी धर्मपाल जी ने किया है। गांधी जी के एक शब्द को सूत्र के रूप में पकड़ करके उन्होंने जो रिसर्च किया और उसके अनुसार 1818 से पूर्व, ठीक से सुनिए, 1818 से पूर्व इस देश में कहां कहां कितनी शिक्षा होती थी, इसका जो सर्वे अंग्रेजों ने किया था और उनके गैजेट में प्रकाशित किया था, क्योंकि अंग्रेज यहां पर एक नई शिक्षा पद्धति लाना चाहते थे, जिस शिक्षा पद्धति का मैकॉले के द्वारा लिखा हुआ स्पष्ट उद्देश्य यह था कि मेरी शिक्षा इस देश में 30 साल चलने दो, यहां का आदमी चमड़ी में और रक्त में भारतीय होगा, बाकी दिल और दिमाग से वह विदेशी बन जाएगा। उस प्रकार की शिक्षा पद्धति यहां पर लाने के लिए अंग्रेजों की पद्धति थी सर्वे करने की। उन्होंने जो सर्वे किया, वे उस सर्वे के सारे रिपोर्ट गैजेट में आए और उन गैजेट्स का उपयोग करके धर्मपाल जी ने जो लिखा है उससे पता चलता है कितनी बढ़िया शिक्षा इस देश में थी, किस प्रदेश के किस जिले में कितने स्कूल थे, वहां पर कितने छात्र पढ़ते थे, किस किस जाति के अध्यापक थे, किस किस जाति के छात्र थे, ये सारा उसमें आपको मिलेगा। यू कैन रीड धर्मपाल, उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। ये ब्यूटीफुल ट्री शब्द है गांधी जी के। गांधी जी ने लंदन में एक भाषण किया था कि आप लोग हमें क्या सिखाते हैं, यू पीपल हैव कम एंड डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, इन शब्दों को धर्मपाल जी ने पकड़ा और जो रिसर्च किया उसका परिणाम वो पुस्तक है। धर्मपाल जी अत्यंत बड़े विचारक थे, बहुत श्रेष्ठ विचारकों के नाम हम लोग जानते नहीं है, ये अपनी गड़बड़ी है। अभी अभी कुछ वर्षों पहले उनका देहावसान हुआ। चिकित्सा अच्छी थी, लेकिन चिकित्सा भी तब काम करती है ना जब कोई परहेज रखे। यह विचित्रवीर्य परहेज रखे नहीं सकता था, इसका परिणाम यह हुआ विवाह होने के पश्चात सातवें वर्ष में निपुत्रिक अवस्था में विचित्रवीर्य का देहावसान हो गया। समस्या वही हुई, सत्यवती माता स्वयं बड़ी विलक्षण स्थिति में आ गई। अंबा अंबिका, अंबा तो चली गई, अंबिका और अंबालिका दोनों पुत्र वधुएं विधवा, अब क्या किया जाए, सिंहासन को कौन संभालेगा एक बात, वंश आगे कैसे चलेगा दूसरी बात। सत्यवती माता ने भीष्म से कहा तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम विवाह भी कर लो। भीष्म ने कहा मां जीवन में एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं इस सिंहासन का सेवक हो सकता हूं लेकिन राजा नहीं हो सकता, और विवाह करने की तो बात है ही नहीं। बीच में एक दूसरा प्रस्ताव आया। तब तक क्या हुआ, इधर ये जो अंबा चली गई थी, ये अंबा शाल्व के पास गई, शाल्व ने उसको नकार दिया। शाल्व ने कहा मेरे सामने भीष्म ने तुम्हारा अपहरण किया, अब मैं तुम्हारा स्वीकार करने जितना हल्के वंश का नहीं। शाल्व ने उसका अस्वीकार कर दिया, शाल्व ने अस्वीकार कर दिया, वो पुनः हस्तिनापुर आई। उसने कहा भीष्म से कि आपके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, आपको मेरे साथ विवाह करना चाहिए। भीष्म ने कहा यह बात तो कभी नहीं हो सकती, मेरा तो विवाह इस जन्म में होने की बात ही नहीं है, अब क्या किया जाए। अब ये अंबा पुनः वन में चली गई, मैं तपस्या करके अपने जीवन को खत्म करूंगी ऐसा कह करके। इतने में उस अंबा के नाना जी जिनका नाम था अकृतवर्णा, वो भी वहीं पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब अपनी द्वैती की इस अवस्था को देखा तो उन्होंने कहा बेटा तुम एक काम करो, यह भीष्म तुमसे विवाह क्यों नहीं करेगा, तुम्हारी दुर्दशा का कारण यह भीष्म है, इसलिए उसको तो तुम्हारे साथ विवाह करना ही चाहिए। इसने कहा कि नाना जी मैंने जाकर के प्रयास कर लिया, वे किसी की बात मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानता है, तुम ऐसे करो, उसके गुरु जी यहां पर आने वाले हैं, भीष्माचार्य के गुरु जी है परशुराम जी महाराज, परशुराम जी महाराज भीष्म के गुरु, भीष्म के तीन गुरु जी है, भीष्म ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है बृहस्पति से, वेदांत का अध्ययन किया है वशिष्ठ मुनि से, और शस्त्रास्त्र विद्या को ग्रहण किया है बृहस्पति से, द हाइएस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए भीष्म के पास सबका एसेंस है। अब शस्त्रास्त्र विद्या जो भीष्म ने ग्रहण की है परशुराम जी महाराज से, परशुराम जी वैसे तो किसी को विद्या देने वाले थे नहीं, लेकिन भीष्म को दी इसका कारण यह था, गंगा जी इसका कारण था। अब बहुत बड़ी है गंगा जी, गंगा जी की बात सबको माननी पड़ती है। परशुराम जी से शस्त्र विद्या ग्रहण की है भीष्म ने, अकृतवर्ण ने उस अंबिका से गलती हो गई, अंबा से कहा परशुराम जी आप आने वाले हैं, तुम परशुराम जी से मिलो, उनसे कहो, उनकी बात भीष्म को माननी पड़ेगी। अंबा गई, अकृतवर्ण उसको ले गए, परशुराम जी के सामने रोई, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। और जब अकृतवर्ण ने कह दिया कि इसका विवाह भीष्म के साथ होना चाहिए, तो परशुराम जी बोल गए इसमें कौन बड़ी बात है, भीष्म तो मेरा शिष्य है, मानेगा मेरी बात, उनको क्या पता शिष्य कैसा है। परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया, भीष्म गए, गुरुदेव आए तो भीष्म ने पूजन उत्तम किया, बहुत सम्मान किया। परशुराम जी ने कहा कि अरे इस छोरी का सारा जीवन तुम्हारे कारण बिगड़ गया, इसके साथ विवाह करने में तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम विवाह कर लो। भीष्म ने कहा गुरुदेव जो प्रतिज्ञा मैंने की है उस प्रतिज्ञा के सरासरी विरुद्ध बात है, और इसलिए ये बात आप मुझे नहीं कहेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं मान नहीं सकता, चक्रवर्ती माता ने मुझे यह बात फिर से कही थी लेकिन मैंने इसको मान्य नहीं किया। परशुराम जी का स्वर चढ़ गया, पता है क्या किसके सामने बोल रहे हो, भीष्म हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मेरे गुरुदेव के सामने बोल रहा हूं, तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारे गुरुदेव कैसे रहे हैं, 21 बार घूम करके हमने इस पृथ्वी को निक्षत्रिय किया है। जी महाराज पता है, फिर मेरी आज्ञा का अपहरण करना होगा, वो तो नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। भीष्म ने कहा जैसी आपकी इच्छा। परशुराम जी ने फिर से एक बार कहा तुम मेरे शिष्य हो, एक बात ध्यान में ले लो कि कोई क्षत्रिय मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया था। भीष्म ने कहा कोई क्षत्रिय आपके सामने इसलिए खड़ा नहीं हो पाया कि कोई क्षत्रिय आपका शिष्य नहीं था, मैं आपका शिष्य हूं, मैं सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता। और बड़ी आश्चर्य की बात, परशुराम भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध का बड़ा लंबा वर्णन है, एक दो दिन नहीं 23 दिनों तक युद्ध चला, 21 बार भूमंडल को निक्षत्रिय करने वाले परशुराम जी के सामने भीष्म 23 दिन डट करके खड़े। भीष्म का पराभव होने का कोई आसार दिखता नहीं है, परशुराम जी महाराज पराभव मान्य कर ले तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है किसी मध्यस्थ की, पहले देवताओं ने मध्यस्थी की वो काम नहीं आई, भगवती गंगा जी ने आकर के भीष्म को समझाया। देवताओं ने गंगा जी से कहा, गंगा जी ने भीष्म से कहा बेटे गुरु जी के साथ ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए। भीष्म ने कहा मुझे भी पता है लेकिन गुरु जी को भी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं करनी चाहिए जो मेरे जीवन के सिद्धांत के विरुद्ध हो। चलो जो भी हो गया, गंगा जी समझाती है भीष्म को, गंगा जी समझाती है भीष्म को। गंगा जी ने कहा देखो अब इस बात को सुलझा लो, तुम्हारे गुरु जी का पराभव होना भी अच्छा नहीं है ना। भीष्म ने कहा नहीं है लेकिन मेरा भी पराभव होना अच्छा नहीं है, तो फिर ये मामला निपटेगा कैसे। भीष्म ने कहा मां एक काम करो, कल वो युद्ध के क्षेत्र में आ जाए, मैं पहला बाण नहीं छोड़ूंगा, उनसे कह दें कि यदि वे बाण नहीं छोड़ेंगे तो मैं बाण नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों सामने खड़े होकर के फिर पीछे हो जाएंगे, यदि उन्होंने बाण छोड़ दिया तो मैं बाण छोड़ूंगा, उत्तर दूंगा, मैं अपनी ओर से युद्ध का आरंभ नहीं करूंगा। कल गंगा जी ने जाकर के परशुराम जी को समझाया, बाबा जी मान लियो, अब भीष्म भी यही, परशुराम जी भी यही चाहते थे कि कोई आकर के समझौता करावे, क्योंकि हारने के लक्षण दिखने लग गए थे। भीष्म का पराक्रम देखिए, और वो दिन आया, परशुराम जी सामने खड़े हैं, भीष्म ने प्रणाम किया, जाकर के अपने स्थान पर खड़े हो गए, शस्त्र को हाथ से ले लिया लेकिन चलाया नहीं। परशुराम जी खड़े हैं, भीष्म भी खड़े हैं। थोड़ी देर तक दोनों ने प्रतीक्षा की और आकर के भीष्म ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने भीष्म को गले लगाया और यह विवाद समाप्त हुआ। यह पराक्रम भीष्म का है, और केवल पराक्रम नहीं है, पराक्रम के साथ साथ ये जीवन निष्ठा है। सिद्धांतों पर अड़िग कैसे रहा जाए, नियमों का पालन कैसे किया जाए, इसके आदर्श भीष्म है। लेकिन विवेक पूर्ण समय देख करके नियमों को कैसे तोड़ा जाए, इसके आदर्श कृष्ण भगवान है। जीवन नियमों के लिए नहीं होता है, नियम जीवन के लिए होते हैं। कीपिंग द एंड इन द माइंड, हमें अंततोगत्वा कहां पहुंचना है, इसको ध्यान में रखकर के नियमों के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ये कृष्ण भगवान के जीवन से नहीं सीखेंगे तो विषम स्थितियों में आप लोग शत्रु का पराभव कर ही नहीं सकते। शांतिपूर्व की कथा जब मुझे कहनी थी पूज्य स्वामी महेशान जी महाराज की आज्ञा से, उसकी पहली रात्रि में मैं बैठा था। मैंने कहा शांतिपूर्व में केवल भीष्म की, केवल महाभारत की आरती होकर के नहीं चलेगा, भीष्म की आरती होनी चाहिए। हम लोगों को कल वो करनी चाहिए थी, आज केवल बोल लेंगे, उसमें भीष्म का संपूर्ण जीवन आपको दिखेगा।
गंगानंदन
मंगल आरती, गंगानंदन
भीष्म पितामह हरि जगवंदन,
भीष्म पितामह जगवंदन
भरत वंश के दिव्य दिवाकर,
भरत वंश के
सेवा व्रत तेजो मय भास्कर,
सेवा व्रत तेजो मय भास्कर
ब्रह्मचर्य तप प्रखर प्रभाकर,
ब्रह्मचर्य तप प्रखर प्रभाकर
तीर्थ भक्त हे शांतनु नंदन, मंगल आरती गंगानंदन,
मंगल आरती गंगानंदन
धनुर्वेद श्री परशुराम से,
धनुर्वेद श्री परशुराम से
नीति शास्त्र श्री बृहस्पति से,
नीति शास्त्र श्री बृहस्पति से
सांग वेद श्री वशिष्ठ मुनि से,
सांग वेद श्री वशिष्ठ मुनि से
अद्भुत तव ज्ञानार्चन,
कैसा अद्भुत तव ज्ञानार्चन
मंगल आरती गंगानंदन,
मंगल आरती गंगानंदन
दिव्यात्रों के अद्भुत ज्ञाता,
दिव्यात्रों के अद्भुत
वेदों के उद्भट व्याख्याता,
वेदों के उद्भट व्याख्याता
दृढ़ प्रति अरु सन्मति दाता,
दृढ़ प्रति अरु सन्मति दाता
सेवामय तनु जैसे चंदन,
सेवामय तनु जैसे चंदन
मंगल आरती गंगानंदन,
मंगल आरती गंगानंदन
महासमर के सेना नायक,
महासमर के सेना नायक
ऋतु दल दलन भू त्रिपुर संहारक
त्रिपुदल गलन घोर संहारक
पांडुतनय वत्सल सहायक
पांडुतनय वत्सल सहायक
मृत्युंजय पद को अभिवादन
मृत्युंजय पद को अभिवादन
मंगल आरती गंगानंदन
मंगल आरती गंगानंदन
सरसैयाश्रित परम योगी वर
सरसैयाश्रित परम योगी वर
धर्म प्रवक्ता विद्या सागर
धर्म प्रवक्ता विद्या सागर
कृष्णार्पित मति महाभक्तवर
कृष्णार्पित मति महाभक्तवर
पुण्य स्मृति में सादर तर्पण
पुण्य स्मृति में सादर तर्पण
मंगल आरती गंगानंदन
मंगल आरती गंगानंदन
भीष्म पितामह वीरगवंदन
भीष्म पितामह वीरगवंदन
ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृद्धिनी कृष्णद्वैपायनंकारी चिन्तयामास वै मुनिम् सवेदान् महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं मुनीश्वरों हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने समस्या अत्यंत बड़ी विकट थी। भगवती सत्यवती माता ने एक बात और भी भीष्म के सामने लाई। प्राचीन काल में कुछ जातियों में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी यदि ज्येष्ठ भ्राता का निधन अकाल में हो गया तो देवर के साथ विवाह कर सकती थी। जीवन में केवल घिसे पिटे नियमों से मत चलिएगा। परिस्थितियों को देख करके नियम बनते हैं और बदलते हैं, इसको भी ध्यान में लीजिएगा। हमारे देश में भी जो युद्ध करने वाली जातियां रही उनमें ये नियम रहा है, क्योंकि जवान छोकरे युद्ध के लिए जाते और क्या पता उनका क्या होगा। ऐसी अवस्था में उनकी पत्नियों का क्या करना, उनके जीवन का क्या करना। सभी लोगों के लिए एक प्रकार के नियम नहीं रहे थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था यह अनेक स्तरीय मल्टी टायर्ड व्यवस्था है, इसको ध्यान में लीजिएगा, तब जाकर के इन स्थितियों को आप समझ सकेंगे। भगवती सत्यवती माता ने भीष्म के सामने यह प्रस्ताव रखा। भीष्म ने कहा, मां मेरे जीवन की इन दो बातों को छोड़ करके मेरे साथ कोई बात कीजिए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का भंग मेरे जीवन में हो नहीं सकता और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मैं बैठ नहीं सकता। बाकी सारी सेवाएं आपके अर्पित हैं। देखो विशुद्ध मन की पराकाष्ठा कितनी है। अब यहां पर भीष्म चाहे जो कर सकते हैं लेकिन मन अडिग है। क्या किया जाए? भगवती सत्यवती माता ने अंततो गत्वा विवश होकर के एक सुझाव दिया। सत्यवती माता ने कहा, एक काम मैं कर सकती हूं क्या? सत्यवती माता भी भीष्म की सलाह के अनुसार काम करती है, क्योंकि भीष्म के विवेक का सबको भरोसा हो गया है। भीष्म के निर्णय कभी गलत नहीं। एक ही प्रसंग में उनका निर्णय गलत था, उसको गलत मैं कहता हूं, उनकी दृष्टि से शायद नहीं भी था, लेकिन यदि उतना एक निर्णय गलत उनके जीवन में नहीं होता तो कृष्ण और भीष्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए मैं जो महाभारत की मीमांसा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णिमा के चंद्र है और भीष्म चतुर्दशी के चंद्र है, एक कला का अंतर रह गया। वो प्रसंग क्या है आगे हम देखेंगे, लेकिन यही तो महाभारत की विशेषता है कि बड़े से बड़े व्यक्ति में कहीं न कहीं एक खामी रह जाती है और छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कहीं न कहीं चमकीला पहलू होता है, मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं। विश्व के विवेक का सबको विश्वास था। सत्यवती माता ने पूछा, मेरा ही कानीन पुत्र है वेदव्यास। सत्यवती माता कौमार्य अवस्था में जिस बालक को जन्म देती है, भगवान पराशर महामुनि से, वे भगवान वेदव्यास महामुनि है। वो सारी परिस्थिति अलग थी, भगवान वेदव्यास साक्षात नारायण के अवतार हैं और जन्म होते ही वे स्वयं बड़े होकर के मां से यह कहकर के चले गए थे कि मां, जीवन में जब कभी आवश्यकता पड़े तब आप मुझे केवल याद करना, स्मर्तगामी होने के कारण जहां पर जब आप मुझे याद करेंगी वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा और जो आपकी सेवा मुझे करनी होगी, आप मेरी मां हैं, मैं अवश्य करना चाहूंगा। भगवती सत्यवती माता ने भीष्म से पूछा, ऐसी अवस्था में भगवान वेदव्यास जी महाराज की कृपा से यदि इन दोनों पुत्र वधुओं में पुत्रोत्पत्ति होती है नियोग पद्धति से, तो इसमें तुम्हारी आपत्ति क्या है? भीष्म ने कहा, इसमें आपत्ति जैसा कुछ नहीं है, इस निर्णय से अच्छा निर्णय हो नहीं सकता है। भगवान वेदव्यास जी महाराज की केवल कृपा दृष्टि के प्रभाव से अंबिका में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका में पांडु का जन्म हुआ और एक दासी में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम विदुर है। पुनः घर तीन बालकों से भर गया, अंबिका और अंबालिका इन बालकों का पालन करती है, लेकिन इनकी शिक्षा की सारी जिम्मेदारी भीष्म के ऊपर है। ज्येष्ठ बालक का नाम धृतराष्ट्र है जो जन्म से अंध है, दूसरा बालक पांडु है जो पांडुर्वर्ण का है और तीसरा बालक जो है विदुर, वो दासी पुत्र है, ज्ञान विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। अब इनकी भी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भीष्म को करनी पड़ी। हम थोड़ी कथा वेग से ले जाते हैं। धृतराष्ट्र जब बड़े हुए, सत्यवती माता ने फिर से कहा, भैया हमारे वंश में पुत्रों की कमी है, आप अपने अपने वंशों का भी विचार कीजिए। हमारे यहां कन्याओं की कमी है पहली बात, और वैसे लोक संख्या की ही कमी हो गई है। अगली पीढ़ी में आप एक दृश्य देखेंगे, बड़े बड़े विशाल भवन बने हैं आप लोगों के, लेकिन रहने वाले कोई नहीं है। यू आर गोइंग टू फेस दोज ऑड्स, यदि ध्यान नहीं देंगे तो। एक ही बेटा है, चला गया अमेरिका, बुड्ढा बुड्ढी मुंबई। अब वो रोज फोन पर बात करेगा, फोन से क्या होने वाला है? हिंदू समाज किस दिशा में जा रहा है, इसका विचार अभी अधिक से अधिक 5-7 वर्षों के भीतर आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो डूबना तय है। हम लोगों ने संख्या बल का कभी विचार ही नहीं किया। नंबर ऑल्सो काउंट्स इन डेमोक्रेसी, इस बात का हम लोगों को भान होना चाहिए, क्योंकि आखिर डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति हो तो भी एक मत देने का अधिकार है, और जिसको शराब की एक बोतल देकर के खरीदा जा सकता है उसको भी एक मत देने का अधिकार है। तो क्या होगा? संख्या बल का विचार। हम संस्कारों का विचार करते हैं, संगठन का विचार करते हैं, संख्या का भी विचार करना चाहिए। सत्यवती माता के सामने यही क्राइसिस है। मां ने कहा भैया इसका विवाह जो है धृतराष्ट्र का ऐसी कन्या से करना चाहिए, थोड़ा देखो ज्योतिष के अनुसार और कैसे तुम देखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहां पुत्रों की कमी है। भीष्म ने इधर उधर दूतों को भेजा, उनको पता चला गांधार देश के राजा सुबल की कन्या गांधारी भगवान शिवजी की भक्त है और भगवान शिवजी से वह केवल एक याचना कर रही है कि मैं 100 पुत्रों की माता बनने का गौरव प्राप्त करना चाहती हूं। 100 पुत्रों की माता, हमारे यहां अधिक पुत्र होना गौरव की बात मानी जाती थी। हमारे वैल्यूज बदला दिए गए मीडिया के बल पर। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो 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 कर दिया। अब हम दो हमारा एक एक, एक फिर एक मूर्खता का शब्द आ गया हमारे देश में, माइक्रो फैमिली, न्यूक्लियर, एकदम छोटी और बिल्कुल नहीं हो तो और ही अच्छा। इट्स कॉल्ड डिंक, डबल इनकम एंड नो किड्स, डिंक, DINK। ये सारे दलदल में डूबने के लक्षण है। इसलिए बाकी लोगों का जो होगा होगा, लेकिन अपने अपने परिवार का विचार तो करो, नहीं तो डूबना ही पक्का है। किसको अच्छा लगे किसको न लगे, हम तो अपनी बात बोले बिना रहते नहीं है। जो सत्य लगता है, प्रतीत होता है, वो बोलना चाहिए। सत्यम वद का अर्थ यह है जो बोलेंगे वो सत्य हो यह एक बात, लेकिन जो सत्य लगता है वो बोले बिना मत्र हो यह दूसरी बात। उसका दोनों ओर से अर्थ है, उसमें कल्याण है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, राजर्षि भीष्म ने सर्वत्र दूतों को भेजा, गांधार देश के राजा सुबल की कन्या गांधारी भगवान शिवजी की आराधना इसलिए कर रही है कि मैं 100 पुत्रों की माता होने का गौरव प्राप्त करना चाहती हूं। भीष्म को लगा बस इससे बढ़िया और क्या कन्या हो सकती है। भीष्म ने स्वयं अपनी ओर से, राजा की ओर से वहां पर दूतों को भेजा। हस्तिनापुर के ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हो जाए। अब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो, यह प्रस्ताव जब हस्तिनापुर की ओर से गया तो महाराज सुबल के यहां पर विचार हुआ। किसी परिवार में विचार तो होता ही है, अपनी कन्या कहां देना है। आपत्ति यह गई थी हस्तिनापुर के बारे में, बाकी कुछ सोचने की बातें नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी आपत्ति थी कि राजकुमार अंधा है, अंधे राजकुमार का विवाह करना है, अपनी कन्या उन्हें देना कि नहीं देना। क्या सोचा होगा उन लोगों ने, कल्पना करो। अरे हस्तिनापुर उस समय का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजघराना था, इसमें बहुत बड़ा काम छोटा सुबल के बेटे ने भी किया। उनका नाम आप जानते हैं क्या? मिस्टर शकुनी फ्रॉम कंधार। शकुनी ने कहा वाह ये तो अपने लिए चांस है। शकुनी की सोच देखिए। अच्छा ये भी निश्चित हो गया था कि यह विवाह हस्तिनापुर में होगा, सारी व्यवस्था हम करेंगे, आपको केवल कन्या को लेकर के यहां पर आना है। विचार ये किया गया कि इतने बड़े घराने में हमारी कन्या जाती हो तो इस प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। शकुनी ने और एक विचार किया। शकुनी तो वैसे भी खलनायक ही है। शकुनी ने विचार किया, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चांस हो गया, मेरा जीजा अंधा और अब वहां पर कारोबार तो मेरे हाथ में अपने आप आ जाएगा। राजघराने के भीतर प्रवेश, अच्छा महारानी के भाई, तो महारानी के भाई को कौन रोक टोक कर सकता है? हमारे देश के एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा क्या, जिन लोगों का चेक इन नहीं होना उनकी जो लिस्ट है ना, उसको कभी पढ़िए। मेरे ध्यान में नहीं आता है कि किसी के जवाई का चेक इन नहीं होने के बाद वहां पर काय को लिखी गई हुई थी। भाई राष्ट्रपति का चेक इन नहीं होगा, इसका नहीं होगा, पदाधिकारियों का चेक इन नहीं होने की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन किसी मैडम के जवाई का भी चेक इन नहीं होगा, वो नाम आपको हर आपको समझने में इतनी देरी लगी। तो बतलाना यह था कि बड़ों के साथ संबंध होने का ये उपयोग होता है जीवन में, तो ये तो भ्रष्ट लोग चाहे सो कर सकते हैं इस देश में, और कोई उनको रोक नहीं सकता। ये विवाह निश्चित हुआ, वो कन्या इतनी अच्छी है, धर्मनिष्ठ है, गांधारी को महाभारत में महासती कहा गया है, वो अद्भुत है। उसकी गलती कहां है बताऊं, मैं सबकी गलतियां बताऊंगा, दो की नहीं बताऊंगा, जानने पर भी कृष्ण भगवान की और अर्जुन की। सब देवो में देव निराले, जय बम बम भोले,
सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले भोले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले,
शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले,
जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले,
सब देवों में देव निराले, बाबा जय बम बम भोले,
सब देवों में देव निराले, बाबा जय बम भोले,
सब देवों में देव निराले, बाबा जय बम बम भोले,
सब देवों में देव निराले, बाबा जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले, जय बम बम भोले,
जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले, जय बम बम भोले।
भोले
जय बम बम भोले भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले
जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले
कब देवों में देवन अले बाबा जय बम बम भोले
कब देवों में देवन अले बाबा जय बम बम भोले
सब देवों में देवन अले बाबा जय बम बम भोले
सब देवों में देवन अले बाबा जय बम बम भोले
जय बम बम भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले
जय बम बम भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले
जय बम बम भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले
जय बम बम भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम भोले
जय बम बम भोले
जय बम बम भोले
जय बम बम भोले
जय बम बम भोले
नमः पार्वती पतये हर हर
सभी देवताओं में भगवान महादेव जी महाराज अलग ही ध्यान रखना। उनका वर्णन ठीक से करना हो तो ऑल मैजिक एंड नो लॉजिक, वो कार्य कारण भाव से चलते नहीं है। उनके पास जाकर के किसे क्या मिल जाएगा पता ही नहीं, योग्यता है नहीं है किसको कैसे मिला यू डोंट वरी। भगवान महादेव जी महाराज तो अवधारणी है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं तो महाभारत की बात केवल जानता हूं। आगे चलकर के आप देखेंगे उतना देखने का प्रसंग आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन शांति पर्व में भीष्माचार्य महाराज से धर्मराज युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा। अनेक प्रश्न है, वो शांति पर्व तो एक अद्भुत ही बात है। प्रश्न ये पूछा अनेक प्रश्नों में, दादाजी सब कुछ सुन दिया मैंने, मुझे शिवजी की महिमा सुनाई है। यह एक ही प्रश्न है जिसका उत्तर भीष्म ने नहीं दिया है। कठिन से कठिन और सुंदर प्रश्नों के सारे उत्तर मिलेंगे। यह प्रश्न पूछा गया और शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने कहा, बेटे यह प्रश्न तुम मुझसे मत पूछो। भगवान शिवजी की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है। भगवान शिवजी की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य संसार में केवल कृष्ण भगवान में। इसलिए अब मैं भी मेरे जीवन के अंत में भगवान महादेव की महिमा सुनना चाहता हूं। कृष्ण भगवान बोलेंगे और हम दादा पोते दोनों मिलकर के वो सुनेंगे। और शांति पर्व में केवल एक ये प्रश्न है जिसका उत्तर कृष्ण भगवान ने दिया है, और कृष्ण भगवान ने अपने मुख से जो शिवजी की महिमा गाई है, सर्वाच रिक्त है भगवान शिव, ऐसा तो अन्य कोई नहीं है। उनकी आराधना मत छोड़ना। कन्यावस्था में भगवती गांधारी भगवान शिव जी की आराधना करती है और उसको भगवान शिव दृष्टांत से बतला देते हैं, बिटिया तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब कैसे होंगे, क्या होंगे, दैट शुड बी मैनेज्ड। शिव जी ने कह दिया हो गए तो हो गए। भीष्म ने यहां तक का पता सब लगा लिया था इस गांधारी को, परिवार से बेठाठ मार से हस्तिनापुर लाया गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह संपन्न हुआ, भीष्म के ही निर्देशन में आगे। अब जो विवाह संपन्न हो गया तो बाकी तो सब लौट गए लेकिन मामा जी रह गए। ये मामा जी के रहने का परिणाम बड़ा गहरा है, बाद में देखेंगे। भीष्म के ही अध्यवसाय से पांडु के 2 विवाह हुए, महाराज कुंती भोज की कन्या कुंती के साथ और मध्यप्रदेश की राजकन्या माद्री, उसने स्वयंवर में महाराज पांडु का वरण किया। पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। भीष्म ने ही विदुर जी का विवाह देवकी नाम की पारसवी कन्या के साथ करवा दिया। बड़ी विलक्षण अवस्था भीष्म की यह है, सबके घर मांडने का काम भीष्म कर रहे हैं, उनका कोई घर नहीं है। भगवान वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं मुनीश्वरों, महाराज पांडु का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। जेठ पुत्र धृतराष्ट्र है, यह बात सत्य है, लेकिन सिंहासन पर विराजमान होने वाले राजा के जो लक्षण बतलाए गए हैं धर्मशास्त्र में, उसमें उसका शरीर अव्यंग होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। अंधत्व के कारण जेठ राजकुमार का सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक हो नहीं सकता था, इसमें कोई अन्याय की बात नहीं थी, यह परंपरा की बात है। आगे चलकर के दुर्योधन ने इसको अन्याय कहा है, लेकिन इसके पूर्व भी जिस शांतनु का जीवन हमने देखा, वो शांतनु भी बड़े पुत्र नहीं थे, शांतनु भी स्वयं अपने पिता के 3 पुत्रों में से छोटे हैं, प्रतीप, बाल्मीक और शांतनु, ऐसी बात है। लेकिन अन्य राजकुमार इस बाल्मीक को कुष्ठ रोग था, यह बड़ा है, कुष्ठ रोग के कारण वो राजा नहीं हो सकता था। उसने इसके लिए कोई खटपट नहीं की और वह स्वयं जीवन भर तपस्या करते रहे। परंपरा के विधान को स्वीकार करके चलना चाहिए। महाराज पांडु का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के पश्चात महाराज पांडु, अब इधर विवाह भी हुआ और राज्याभिषेक भी हुआ, पांडु ने क्या किया? नियम यह है कि राज्याभिषेक के पश्चात राजा को दिग्विजय के लिए निकलना चाहिए। महाराज पांडु 7 वर्षों तक लगातार केवल युद्ध में रहे, 7 वर्षों तक। विवाह हो चुका है, परिवार की ओर उनका ध्यान नहीं है। सारे संसार के समस्त राजाओं को पांडु ने जीता, केवल एक राजा को वे जीत नहीं पाए थे, मिडिल ईस्ट के एक अरब राजा को, यवन कहा है, यवन का अर्थ ग्रीक, ध्यान रखना चाहिए। यह बात मैं इसलिए बतलाता हूं कि आगे चलकर के जब धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ, युवराज पद के ऊपर दिग्विजय के लिए पांडव चले, अर्जुन ने जाकर के सबसे पहले उस राजा का पराभव किया जिसका पराभव करने की बात उसके पिता के द्वारा नहीं की गई थी, पिताजी से आगे निकल जाए उसी को पुत्र कहते, ध्यान रखना। ये काम अर्जुन ने किया। ये अगली बात है, पांडु उसको जीत नहीं पाए थे। 7 वर्ष तक महाराज पांडु दिग्विजय करते हैं, अपने पराक्रम की धाक सर्वत्र निर्माण कर देते हैं, अत्यंत बड़ी विपुल संपत्ति का प्रवाह, इतने ओघ हस्तिनापुर की ओर। महाराज पांडु विनम्रता के साथ ये सारा धृतराष्ट्र के हाथों में सौंप देते हैं। 7 वर्षों के इस पराक्रम के पश्चात स्वाभाविक था कुंती और माद्री दोनों भी कहती कि आपको हमारे लिए समय नहीं है, 7 वर्षों के बाद कहा है हो, घूमने चलना है, घूमने चलना है, हर हफ्ते घूमने चलना है, काको चलना है, घूमना हो गया ज्यादा काम हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। ये कैसी आदत है हम लोगों ने लगा ली है। 7 वर्षों के पश्चात कुंती और माद्री ने कहा कभी हमारी ओर भी ध्यान देंगे। पांडु ने कहा बिल्कुल चलो, अब हम लोग वन विहार के लिए जाएंगे। और पांडु ने अपने साथ दोनों पत्नियों को लिया, कुछ राजपुरुषों को लिया, कुछ सचिवों को भी लिया, थोड़ी सी सेना को भी लिया। ये चक्रवर्ती सम्राट का विहार है, ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते, छोटा सा ऑफिस भी साथ में होना चाहिए। ये सब कुछ व्यवस्थाएं करके वो चले, सारा वर्णन है। और महाराज पांडु का आनंदपूर्वक वन विहार चलता रहा। दुर्दैव की बात ये थी, ये वन विहार वनवास में बदल गया। घटना कैसे घटी ये हृदय द्रामक प्रसंग है सब। घटना इस प्रकार की घटी कि महाराज पांडु इस वन विहार के समय एक बार मृगया के लिए जब चले तो उन्होंने एक गलत काम कर दिया। एक मृग और मुर्गी की प्रणय क्रीड़ा चली थी। महाराज पांडु ने एकदम अपना बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ने के वो लगना था उस मृग को, मृग को ही लगा, लेकिन मानवीय चीत्कार सुनाई दिया तो महाराज पांडु दौड़ते हुए गए, जाकर के देखा, उनको धक्का लगा कि बाण तो मैंने एक मृग को मारा था और ये ऋषि कुमार यहां पर कैसे आ गया। एक ऋषि कुमार की छाती में वो बाण लगा था और उस मुनि ने कहा महाराज ये तुमने क्या किया। कहा भैया मैंने तो मृग समझ करके बाण मारा था। बात तो सही है, मृग समझ करके बाण मारने में आपकी गलती नहीं थी, लेकिन इतनी तो बुद्धि आपको भी होनी चाहिए थी कि प्रणय क्रीड़ा के समय किसी का वध नहीं किया जाता है, शिकार में भी मृगया में भी कुछ धर्म होता है। अरे पुराने डकैत लोग भी होते थे ना, महिलाओं को नहीं हाथ लगाते थे। कितने कितने डकैतों की कथाएं हमारे देश में इतनी अच्छी है। डकैत आ गया, किसी बहन ने राखी बांध दी, उसकी वृत्ति बदल गई। पुराने डकैत ऐसे थे, डकैत होने पर भी संसद में बैठे हुए भयंकर है, इनके ऊपर किसी धर्म का परिणाम नहीं, किसी नैतिकता का परिणाम नहीं, कोई जीवन मूल्य इनके जीवन में रहा नहीं, ऐसी स्थिति है। उस मुनि ने कहा पांडु मेरा नाम किन्नम है, आजीवन मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं तपस्या कर रहा था, तपस्या करते समय मेरा मन थोड़ा सा विचलित होने लग गया, मुनि कुमार के शरीर में मैं कोई अपराध नहीं कर सकता था, इसलिए मृग का रूप लेकर के मैं स्वयं ये क्रीड़ा कर रहा था। इसका पता तुम्हें होने की आवश्यकता नहीं थी, वो संभव भी नहीं था, लेकिन तुम्हें कम से कम एक नियम का पालन करना चाहिए था कि कोई क्षुद्र पशु भी है, पंछी भी है, रणय क्रीड़ा के समय उसको मारना नहीं चाहिए। हमारे प्राचीन, क्या बताऊं आपको कि भारत कैसा, प्राचीन भारत के मृगया के नियमों में एक नियम था, किसी भी प्राणी को मार सकते, पशु को मार सकते हैं, लेकिन किसी भी गर्भिणी पशु को नहीं मारना, गर्भवती को नहीं मारना। मृगया में भी यह पाप माना जाता था। They did have some values। किन्न मुनि ने कहा, तुमने अत्यंत घोर अपराध किया है, अतृप्त काम वासना लेकर के मैं प्राण त्याग रहा हूं, मैं तुम्हें शाप देकर के जा रहा हूं। ध्यान रखना, काम वासना से लिप्त होकर के जिस समय तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। किन्न ऋषि के इस शाप ने पांडु के जीवन को वनवास बना दिया। मृगया से पांडु लौटे, बहुत खिन्न थे, दुखी थे, स्वाभाविक था। अपनी दोनों पत्नियों को उन्होंने यह बात बतलाई नहीं, लेकिन यह बात वे अपनी पत्नियों से कब तक छिपा सकते थे। आखिर महाराज पांडु को एक दिन यह बात दोनों पत्नियों को बैठा करके समझानी पड़ी, मेरा जीवन तभी तक है जब तक मैं काम भावना से आपका स्पर्श नहीं करता। जिस दिन वो होगा उस दिन मेरा प्राणांत है, इसलिए मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। पांडु ने कह दिया, देखो अपने साथी को कैसे संभालना चाहिए। कुंती और माधुरी दोनों ने कहा, इसमें आपको खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है महाराज, संन्यास आश्रम ही तो आश्रम नहीं है, वानप्रस्थ भी तो आश्रम है, आप संयम का पालन करते हुए वानप्रस्थ के रूप में रहिए, हम भी दोनों तपस्विनियों के रूप में आपके साथ रहेगी, आपको कभी भी गृहस्थाश्रम की बातों के लिए बाध्य नहीं करेगी, सत्संग करेंगे। और अब महाराज पांडु का इन सब के साथ, वहां पर रहने वाले ऋषियों के साथ दीर्घकालीन सत्संग चलता रहा। अब हो ऐसा गया, महाराज पांडु ने अपने साथ जो लोग आए थे उन सबको वापस भेज दिया, ताकि मैं जब समय मिलेगा आ जाऊंगा, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारी बात तो लोगों को बतला नहीं सकते थे, सबको वापस लौटा दिया, अपनी दोनों पत्नियां और कुछ सेवकों के साथ उनका निवास वहां पर है। निरंतर सत्संग करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब अनुष्ठान करते हैं, दोनों पत्नियां भी उनको बड़ा सहयोग करती है। एक बार क्या हुआ, ये जिन ऋषियों के साथ उनकी तपस्या चली थी, तो गांधार राजस्य पुत्र शकुनिरभ्यगात ससारम वैसा लब्ध्वा युक्ता मादाय कौरवान शूरो नामय दुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणा प्रतिमा भुवि। भगवान वैशंपायन जी महाराज वर्णन करते हैं, जिनके साथ रहकर के पांडु सत्संग करते थे, उन ऋषियों के मुख से पांडु ने ऊपर के तीर्थों का और वर्णन सुना और यह भी योजना सुनी कि अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थों का दर्शन करने के लिए यह ऋषि मंडली जाने वाली है। महाराज पांडु ने कहा, हम भी चले तो क्या आपत्ति है। उनमें से कुछ ऋषियों ने कहा, देखो शतशृंगे महाराज तापस समतप्यत, जहां तक आप लोग आ सकते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन एक विशिष्ट मर्यादा के आगे उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जो गृहस्थ होकर के भी पुत्र के पिता नहीं है। महाराज पांडु के हृदय को यह बात विद्ध कर गई, पुत्र नहीं। अब ये भावना तीव्र भी हो गई, विखिन्न हो गए, अपनी पत्नियों से कहा। कुंती ने पहले तो समझाया कि हम लोगों की जो साधना चली है वही ठीक है, हम लोग अपना ऋषियों के साथ अपनी तुलना क्यों करें, वे लोग महान हैं, अधिक साधन कर सकते हैं, जितना हमसे होता है उतना हम कर लें। सुन तो लिया, पांडु का मन माना नहीं। जब माना नहीं तो कुंती माता ने एक सुझाव दिया, उस सुझाव को सुनिए। कुंती माता ने कहा, महाराज आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान में जाकर के आप तीव्र संकल्प कीजिएगा, आपके केवल मन के संकल्प से मुझे गर्भ ले सकता है, मन के संकल्प से। तथा तुमपि मई एव मनसा 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 भरतर्षभ शक्तो जनयितुं पुत्रांस्तपो योग बलान्विता, शक्तो जनयितुं पुत्रांस्तपो योग बलान्विता। हमारे तप में, हमारी मानसिक शक्ति के प्रवाह में ये बल होता है, हम जो चाहे निर्माण कर सकते हैं। इसको जानबूझकर के मैंने आपको इसलिए सुनाया, ये सारा विषय मूलतः समझने के लिए योग वासिष्ठ सुनने की आवश्यकता है, योग वासिष्ठ का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे मन में कितना बल है, हमारे अंतरंग में कितना बल छिपा हुआ है, हमारी कितनी सारी शक्तियां अनयूज्ड, बिना उपयोग किए ही जीवन में नष्ट हो जाती है, उसका सारा का सारा वर्णन योग वासिष्ठ में है। आजकल हम लोग ये सीक्रेट पावर ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं, आपने से भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, अच्छी पुस्तकें हैं, मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है, लेकिन इतना ध्यान रखना ये पुस्तकें योग वासिष्ठ की केवल जूठन मात्र है। थोड़ा सा उसमें कुछ आया है, जितना सीक्रेट में और पावर में और ऐसी अनेक पुस्तकों में कहा गया उससे कितना गुना, शताधिक गुना अधिक ज्ञान हमारी मानसिक शक्तियों का योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों में भरा हुआ है। और मुख्य उसका विषय यह है कि यदि मन को पूर्ण एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त हो जाए और चित्त विशुद्ध हो और एक ही समय एक संकल्प किया जाने की क्षमता संवर्धित हो गई हो, तो केवल हमारा मन भी वस्तुओं को निर्मित कर सकता है। सारी सिद्धियां इस पर निर्भर होती है, मटीरियलाइजेशन, हमारी मानसिक भाव। अरे ये सारा संसार भी क्या है, ये सारा संसार भी तो ब्रह्मा जी के संकल्प का परिणाम है। तीव्र संकल्प मनुष्य का, जिसका चित्त शुद्ध है उसका संकल्प भी सिद्ध होता है, वो तीव्र होना चाहिए। और इसीलिए तो महात्माओं के शब्दों में जो शक्ति रहती थी, उनसे उनके मानसिक आशीर्वादों में जो शक्ति होती थी, वो जो काम करती थी, वो इन्हीं कारणों से काम करती थी। कुंती माता ने कहा, आप केवल ध्यान के बल पर, तपस्या के बल पर मुझे स्पर्श न करते हुए भी पुत्र प्रदान कर सकते हैं। पांडु ने कहा, तपस्वियों के साथ बैठ करके मैंने इन बातों को सुना है, लेकिन कुंती मैं उतना बड़ा तपस्वी नहीं हूं, मैं अपने मन को उतना एकाग्र नहीं कर पाया हूं, मैं अपने जीवन में उतना त्याग नहीं कर पाया हूं, इसलिए मेरे केवल मानसिक संकल्प से तुम्हें पुत्र हो जाए ये मुझे असंभव लगता है, क्या करूं। ऐसा सब होने के पश्चात एक दिन अपने पति को अत्यंत व्यथित देख करके कुंती माता ने कहा, मेरे जीवन की एक बात मैं आपको सुनाना चाहती हूं, यदि आप उसका अनुमति उसका प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं तो उसका भी विचार किया जा सकता है। घटना क्या घटी थी? घटना ऐसी थी, यह भगवती कुंती मूलतः शूरसेन जी की कन्या है। शूरसेन जी के पुत्र है वसुदेव जी और शूरसेन जी की कन्या है कुंती। इसका मूल नाम है प्रथा। यह प्रथा वसुदेव जी की सगी बहन होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, आंटी नहीं, हां बुआ है। लेकिन क्या हुआ, यह अपने घर में रही नहीं। घटना इस प्रकार की घटी थी, प्रसंगों में प्रसंग है। शूरसेन महाराज और कुंती भोज ये दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। उस समय कुंती भोज ने कहा था शूरसेन से कि देखो शूर भैया, कुंती भोज निराश थे एक बार, तो शूरसेन ने पूछा मैत्री के लहजे में, भैया क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों होते हो? तो कहा, अरे ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे जीवन में कोई पुत्र प्राप्ति होने वाली नहीं, संतान प्राप्ति ही नहीं है, उसमें क्या है, मुझे होने वाली पहली संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, जो बच्चा मुझे पहला होगा वो तुम्हारा। ये हमारे यहां पर बहुत होता था, जिसके पुत्र नहीं होता था ना, उसकी बहन कह देती, उसका भाई कह देता, और परिवार टिकते, परिवार टिकने चाहिए, परिवार टिकाने चाहिए, सभी के वंश चलने चाहिए, उसके लिए इस प्रकार की जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो धर्म है, इसको बात इसकी जानकारी रखिएगा। तो कुंतीभोज से शूरसेन ने कहा, अब कुंतीभोज को शूरसेन जी को पहली हुई कन्या, इस कन्या का नाम प्रथा रखा गया, और कन्या जब शैशवावस्था में थी तभी उसको महाराज कुंतीभोज को प्रदान कर दिया गया दत्तक रूप में। यह भगवती कुंती शूरसेन जी की औरस कन्या है, कुंती भोज की दत्तक कन्या है। महाराज कुंती भोज के यहां पर, हमारे यहां पर सभी राजाओं के पास ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ करता था। एक दिन दुर्वासा जी का आगमन हुआ और दुर्वासा जी जब आए रहे सबको अच्छा लगा, तो कुंती भोज ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप महीना दो महीना रहिए ना यहां पर। तो दुर्वासा जी ने कहा, देखो राजन, ये हम जैसे लोग थोड़े समय के लिए आवे वही बात ठीक है, क्योंकि हमारा मूड कब खराब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, और फिर आप लोगों के लिए आफत होगी, इसलिए अभी ठीक है मैं जाता हूं। कुंती भोज ने कहा, नहीं महाराज रहिए ना। तो कहा, देखो मेरी सेवा करना बड़ा कठिन है। उस समय ये कुंती छोटी सी कन्या है, तो इस कन्या ने आगे आकर के कहा, बाबा आपकी जो चाहे सेवा मैं करूंगी, मैं सारी व्यवस्था करूंगी, लेकिन आप रहिए ना। कभी कभी बड़ों का परिणाम नहीं होता है, छोटे बच्चों का परिणाम हो जाता है। उस लाडली सी लगने वाली बिटिया को देख करके और दुर्वासा मुनि वहां पर महीने से अधिक काल के लिए रह गए। अब वो दुर्वासा तो बड़े मूडी है, उनकी सेवा बड़ी कठिन, लेकिन वो सारी सेवा इस कुंती ने स्वयं खड़ी होकर के सेवकों के द्वारा समय समय पर इतनी व्यवस्थित करवाई, दुर्वासा जी को भी जाते समय यह कहना पड़ा कि राजन धन्य है ये तुम्हारी कन्या, इसने मेरे मनोभावों को संभाला और कभी भी इतने दीर्घ समय में भी कभी मुझे गुस्सा करने का अवसर ही नहीं दिया। वैसे उनको गुस्सा करना ही नहीं पड़ता था, ऐसे ही आ जाता था, लेकिन वो आया ही नहीं। विदा होने से पूर्व एकांत में उन्होंने इस बिटिया से कहा, देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। इस मंत्र का उपयोग यह है, जिस देवता को याद करके तुम इस मंत्र का जप करोगी, उस देवता को तुम्हारे पास प्रत्यक्ष होकर के आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन वो देवता आएंगे तुम्हारे पास पुत्रोत्पत्ति के लिए, इसलिए कभी भी भूल करके इस मंत्र का प्रयोग कुतूहल से मत करना, आवश्यकता होने पर करना, सही सही आवश्यकता होने पर उपयोग करने के लिए ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। कुतूहल से इसका जप एक बार भी नहीं करना, इतना ध्यान रखना, जीवन में तुम्हें काम आएंगे। शायद दुर्वासा मुनि को उस छोटी सी कुंती का भवितव्य दिख रहा था कि आगे चलकर के इसके जीवन में इस प्रकार की आपत्ति आने वाली है, और इसीलिए विधाता ने उनके द्वारा वह मंत्र भगवती कुंती को दिलवाया और दुर्वासा मुनि तो चले गए। अब उसके पश्चात भगवती कुंती ने कौमार्यावस्था में ही एक बार उसका जो प्रयोग किया उसका परिणाम क्या हुआ ये बाद में देखेंगे। ये सारी बात तो उसने बतलाई नहीं पांडु को कि मैंने इसका एक बार प्रयोग किया था, ये नहीं बताई। अब जितना बतलाना उतना ही बतलाना चाहिए। कुंती ने इतना बतला दिया कि वो मंत्र मैं जानती हूं, जिस देवता का आवाहन करके उस मंत्र का मैं जप करूंगी, वे देवता आकर के उन देवता की कृपा से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। पांडु ने कहा यह तो बहुत अच्छा हुआ, धन्य है वो ऋषि, शायद उनको पता होगा कि हम लोगों के दाम्पत्य जीवन में यह आपत्ति आने वाली है। कुंती, संसार में सबसे बड़ा महत्व धर्म का है, तुम धर्म का स्मरण करो। मेरी अनुमति है, मेरी इच्छा है। भगवती कुंती ने दुर्वासा मुनि के बतलाए अनुसार थोड़ा सा अनुष्ठान और जप किया और धर्म की कृपा से भगवती कुंती को जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसी का नाम युधिष्ठिर हुआ। उसके पश्चात वायुदेव की कृपा से प्राप्त हुए हैं भीम, उसके पश्चात इंद्र की कृपा से प्राप्त हुए हैं अर्जुन। भगवती कुंती के तीन पुत्र हो गए, तो थोड़ी माद्री उदास है ये देख करके स्वयं महाराज पांडु ने कहा कुंती से कि अरे वो माद्री के भी मन का विचार करना चाहिए, उसको बता दो ना मंत्र। एक बार तो बताओ, पति की आज्ञा का पालन करती हुई कुंती ने माद्री को वो मंत्र बतलाया। माद्री ज्यादा ही स्मार्ट निकली, माद्री ने अश्विनी कुमारों का मंत्र आवाहन किया और इसलिए एक ही समय में माद्री को दो पुत्र प्राप्त होते हैं, उनके नाम नकुल और सहदेव हैं। ये पांचों पांडव धर्म के आधार स्तंभ है, इस बात को ध्यान रखना। जिस प्रकार भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, उसी प्रकार पांडवों के भी नाम का प्रयोग करने से, उच्चारण करने से हमारे जीवन में विविध प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, आयुर्विवर्धति मृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। धर्मराज युधिष्ठिर का चिंतन करने से अपने जीवन में धर्म बढ़ता है, भीमसेन का चिंतन करने से आयु बढ़ती है। भीमसेन वायु पुत्र है, दो देवताओं का चिंतन आयुष्य को बढ़ाता है, पहले देवता हनुमान जी महाराज और दूसरे भीमसेन, दोनों वायु पुत्र है। हनुमान जी भी वायु पुत्र है, भीमसेन भी वायु पुत्र है। अर्जुन का स्मरण करने वाला युद्ध में विजयी होता है। शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। और चूंकि नकुल और सहदेव ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार देवताओं के विशज वैद्य है, उनका स्मरण करने वाले को रोग नहीं होते। ये संपूर्ण धर्म का वृक्ष है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव किया और ये पांडवों के जन्म का इतिहास हम लोगों ने जल्दी जल्दी में देख करके पूरा किया, क्योंकि आज बहुत आगे बढ़ना है हम लोगों को। भगवान वेदव्यास जी महाराज इसे धर्म का वृक्ष कहते हैं। महाभारत में दो वृक्ष है, एक धर्म का वृक्ष है, एक अधर्म का वृक्ष है। धर्म का वृक्ष कैसा है, भगवान वेदव्यास जी ने इसका वर्णन आरंभ में भी किया और आगे चलकर के उद्योग पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से इसका वर्णन किया है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनः भीमसेनोस्य शाखाः माद्री सुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, एक वृक्ष को याद करो, संपूर्ण धर्ममय वृक्ष का नाम युधिष्ठिर, उसके तने के स्थान में अर्जुन है, उसकी शाखा भीमसेन है और नकुल और सहदेव उसके ऊपर लगने वाले पत्र और पुष्प है। माद्री फलौ माद्री सुतौ पुष्प फले सम, पुष्प और फल है। लेकिन इस धर्मरूप वृक्ष का मूल कौन है, भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा और भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा, धर्म रूप वृक्ष का मूल है मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। इसके मूल में भगवान श्री कृष्ण है, वेद है, ब्रह्म का अर्थ है वेद और ब्राह्मणाश्च वेद पाठी ब्राह्मण। यह महाभारत का एक वृक्ष आपके सामने आया जो धर्म वृक्ष है। थोड़ा सा अधर्म वृक्ष का भी हम लोगों को अवलोकन करना चाहिए तब जाकर के और इन दोनों के संघर्ष की बात आगे चलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव।
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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
महात्मा वैशम पायन वर्णन करते हैं राजन तत पुत्र शतम जज्ञे गांधार्याम जनमे जय मां समात्रेण संजज्ञे दुश्शला च शताधिका गांधार्याम कृष्यमानायाम उदरेण विवर्धता। यह तो सारा वन में जो कुछ हो रहा था उसका वृत्तांत हम लोगों ने देखा। हस्तिनापुर का कार्यभार इस समय महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा संभाला जा रहा था। यद्यपि वे आंखों से अंध है, बड़े बुद्धिमान हैं और शरीर से बड़े सुदृढ़ भी हैं। उनकी पत्नी भगवती गांधारी यह अत्यंत विलक्षण पतिव्रता है। ऐसी विलक्षण पतिव्रता जिस पति के साथ मेरा विवाह होना है वे पति अंध है, इस बात का पता चलते ही उस साध्वी बालिका ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। दृष्टिकोण उसका यह था कि जिस सुख से मेरे पति वंचित है वो सुख मुझे भी अपने जीवन में नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस भावना का तो मैं आदर करता हूं लेकिन इसके बारे में मेरा कुछ अन्य सोच है, वो बाद में बतलाता हूं। भगवती गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र और गांधारी का गृहस्थ आश्रम चल रहा है। भगवती गांधारी को स्वपुत्र होने का वरदान भगवान महादेव जी महाराज के द्वारा दिया गया है। भगवान जगत व्यास जी से एक बार पूछा गया, भगवान जगत व्यास जी ने स्वयं कहा, भगवान महादेव जी ने जब दृष्टांत देकर के यह बात कही है तो बिटिया इसमें तुम्हें अविश्वास नहीं होना चाहिए, वो होकर के रहेगा, तुम चिंता मत करो। अब हो क्या गया, भगवती गांधारी के गर्भ रहा। भगवती गांधारी के गर्भ तो रहा लेकिन इधर वन में भगवती कुंती माता ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। इस बात को जब गांधारी ने सुना तो गांधारी बहुत चिढ़ गई। गांधारी को अच्छा नहीं लगा। बात ऐसी थी कि इसके पूर्व गांधारी के बहुत दिनों से गर्भ था लेकिन उसका जन्म ही नहीं हो रहा था। चिड़ी हुई भगवती गांधारी ने अपने स्वयं के पेट के ऊपर अपने हाथों से ताड़न कर लिया, मार लिया। ईर्ष्या भी कितनी बातों की होनी चाहिए, पहला बेटा उसको कि पहला बेटा मुझे। चलो इसका परिणाम यह हो गया कि भगवती गांधारी के उदर में से जन्म तो हुआ लेकिन पुत्र था कन्या का नहीं, एक बड़े माउस पिंड का जन्म हुआ। अब माउस पिंड का जन्म हुआ यह देख करके सब लोग हैरान हो गए, ये क्या हुआ। माउस पिंड को देख करके इसका आप क्या करेंगे, इसको तो फेंकना ही चाहिए। इधर फेंकने की तैयारी हो रही है और उधर एकाएक वेदव्यास भगवान की, धृतराष्ट्र के सामने भगवान वेदव्यास जी महाराज आकर के पहुंच गए। महाभारत में आप एक बात देखेंगे, जहां कहीं अत्यंत विकट स्थिति होती है भगवान वेदव्यास जी महाराज स्वयं पधार जाते हैं अपने आप। वे स्वयं भगवान नारायण की अंश कला के प्रकट रूप है, त्रिकाल ज्ञानी है, सर्वसिद्धि संपन्न है और यह परिवार उनका परिवार है। और इसलिए जहां पर भी जब कभी आवश्यकता होती है वेदव्यास जी महाराज पहुंच जाते हैं। वेदव्यास जी का आगमन हुआ वेदव्यास जी का अत्यंत प्रेम से। धृतराष्ट्र ने विदुर जी ने स्वागत किया, पूजन किया। वेदव्यास जी ने कहा घर में क्या चला है, उनको बतलाया गया कि गांधारी ने एक माउस पिंड को जन्म दिया, मुझे उसके पास ले चलो। भगवान वेदव्यास जी को वहां पर लाया गया। इस माउस पिंड को फेंकने की बात आपने सोच ली। भगवान वेदव्यास जी ने थोड़ा गांधारी को डांटा, तुम्हें भगवान महादेव जी का विश्वास क्यों नहीं था, और जब मैंने भी ये कह दिया था कि जो महादेव जी ने कहा है वो होने वाला है। चलो जो पिंड फेंका नहीं जा सकता, इसमें वे सारे बालक हैं जो आगे गांधारी के पुत्र बनने वाले हैं, शीतल जल की धारा इसके ऊपर छोड़िए, मेरे सामने सब कीजिए। और शीतल जल की धारा उस माउस पिंड के ऊपर जैसे ही छोड़ी गई, जैसे हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं वैसा उसका जब अभिषेचन किया गया तो धीरे धीरे वह माउस पिंड खुलने लग गया। ये सारा लंबा वर्णन महाभारत में है। वह माउस पिंड खुलने लग गया और उसमें आधे अंगूठ जितने छोटे 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 शकल मतलब टुकड़े ऐसे बिखरने लगे। भगवान वेदव्यास जी ने उसके पूर्व सौ कुंभ मंगा करके रखे थे, सौ कुंभों में घृत भर करके रखा था, उसको अभिमंत्रित भी किया था। यह घृत भी मेडिकेटेड था और अभिमंत्रित भी था। भगवान वेदव्यास जी ने उसमें से निकले हुए एक एक शकल को, एक एक छोटे टुकड़े को उस कुंभ में रखवाया और कहा पतले कपड़े से इसके ऊपर ढक्कन बांध दो। पतले कपड़े का, हवा भी अंदर जानी चाहिए और कोई जीव जंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इतनी व्यवस्था कर लो और इन सबको सुरक्षित स्थान में रख दो। उस समय गांधारी ने कहा था, आपने कहा था सौ पुत्र होंगे लेकिन मुझे कन्या भी तो होनी चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने खोज करके देखा, उसमें से एक टुकड़ा और मिल गया, एक कुंभ में और उसको रखवा दिया। और भगवान वेदव्यास जी महाराज ये कहकर के वहां से चल दिए कि धीरे धीरे इन छोटे गर्भों का पोषण इन कुंभों में होगा, ये अपने आप बालक बनेंगे और अपने आप ही एक एक करके कुंभ फूटता जाएगा, बालक का जन्म उस कुंभ में से होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में आप क्या करते हैं, ये सारा वर्णन महाभारत में, उसका पूरा फीडिंग। इसलिए मैंने कहा कि वो घृत केवल घृत सामान्य नहीं है, वह मेडिकेटेड भी है, औषधियुक्त और अभिमंत्रित भी है। एक जीवात्मा का छोटा सा अंश, उसका पोषण, उसके देह का पोषण बाहर के पदार्थ लेकर के किया जाए और अपने आप एक छोटे से पिंड को विकसित करके उसमें से बालक प्राप्त किया जाए, ये सारी संपूर्ण कला इस देश के प्राचीन वैज्ञानिकों के पास थी। भगवान वेदव्यास जी महाराज किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, इज समथिंग मोर नॉट लेस। ऋषि कहते ही हम लोगों को लगता क्या है पता है, दाढ़ी जटा और एकदम क्या बैकवर्ड। नो सर, दे वर मोर फॉरवर्ड देन अस। हम लोग भी उतने फॉरवर्ड नहीं हैं। इतनी जानकारी उनको थी, पिंड ब्रह्मांड की जानकारी थी, कितने शास्त्रों का विकास इस देश ने किया। ये देश अत्यंत विकसित देश था, यूं ही बड़ा महान नहीं था। अच्छा, ये कोई एक अपवादात्मक केस नहीं है। इसी प्रकार की घटना घटी है जब भगवान ऋषभदेव जी को 100 पुत्र हुए हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। उन 100 पुत्रों की एक स्त्री के 100 पुत्र अन्य किस प्रक्रिया से हो सकते हैं? इन कुंभों के अंदर उन पिंडों का विकास होता रहा, विकास होता रहा। और एक बड़ी मजे की बात आपको बतलाता हूं। पहला घड़ा उस दिन फूटा जिस दिन वन में भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन का और दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ है। अब दोनों की ग्रह दशा में अंतर क्यों आया, ये ज्योतिषियों का विषय है, मेरा नहीं। लेकिन जैसे ही उस दुर्योधन का, उस बालक का रुदन, उसका रोना सुनाई दिया, ओ अत्यंत आनंद महाराज धृतराष्ट्र को हुआ, गांधारी को हुआ, सभी को हुआ, होना स्वाभाविक था। वन में उसी दिन भीमसेन का जन्म हुआ है और हस्तिनापुर में उसी दिन दुर्योधन का जन्म हुआ है। लेकिन जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उस दिन अपशकुन बहुत ज्यादा हुई। उन सारे अपशकुनों को देख करके ज्योतिषियों ने भी और विदुर जी ने भी कहा कि महाराज सारे लक्षण इस बालक के ऐसे है कि ये कुल के नाश का कारण हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। चलो, एक 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 बालक का जन्म होता गया और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है दुश्शला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बात आपने सुनी ना, एक पुत्र की बात और सुन लीजिए। धृतराष्ट्र के एक और पुत्र हुआ और वह पुत्र एक वैश्य स्त्री धृतराष्ट्र की सेवा में थी। भगवती गांधारी जिस समय गर्भवती है उस समय धृतराष्ट्र को उस दासी से एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है युयुत्सु। मैंने उसका नाम आपको इसलिए जानबूझ करके बतलाया कि सारे के सारे कौरव मारे गए, बाद में युयुत्सु केवल बचा है। और यह युयुत्सु युद्ध के पहले दिन पार्टी बदल करके उधर का इधर चला गया था। लेकिन ये युयुत्सु धार्मिक वृत्ति का था, इसे कौरवों के द्वारा किया गया पापाचरण मान्य नहीं था। भगवान वैशंपायन महाराज वर्णन करते हैं, चलो कैसे भी हो ये 100 पुत्र और एक कन्या दुश्शला, इन सभी का संगोपन बड़े आनंद के साथ हस्तिनापुर में होने लगा। उधर वन में क्या हुआ? वन में ये पांचों पुत्र, माता पिता, दोनों माताएं और पिताजी, इस प्रकार से उनका सारा समय ही ऋषियों की संगति में जा रहा था। बड़े बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनने मिलते थे, उत्तमोत्तम तीर्थों में रहने मिलता था, अनुष्ठान किए जाते थे और सारे संस्कार इनके ऋषियों के द्वारा किए गए, उनका नामकरण भी ऋषियों ने किया है, आदि आदि। काल के क्रम में एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना इस प्रकार की घटी, धर्मराज युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे तब की यह बात है, और इन सारे भाइयों में 2-2 वर्षों का अंतर है। धर्मराज युधिष्ठिर 16 वर्ष के हैं और घटना इस प्रकार की घटी कि ये इनके पिता महाराज पांडु और भगवती माद्री जरा घूमते घूमते दूर चले गए। ऐसे ही टहल रहे थे, वसंत ऋतु था, और एकाएक महाराज पांडु के अंतकरण में कामोद्रेक हुआ। महाराज पांडु के मन में कामोद्रेक होते ही उन्होंने कुंती, गलती हो गई, माद्री को पकड़ना चाहा। माद्री सावधान थी, उसको पता था कि किसी प्रकार अपने पति के द्वारा इस अवस्था में स्पर्श किए जाने पर उनकी मृत्यु है, इसलिए उसने अपने को रोकने का प्रयास किया। लेकिन पांडु के साथ उसका अत्याचार चलता है, जैसे ही महाराज पांडु ने माद्री को पकड़ करके अपने आलिंगन में लिया, उसी क्षण महाराज पांडु का देहावसान हो गया, ऋषि का शाप सत्य हुआ, महाराज पांडु गिरे। भगवती माद्री चिल्लाई, कुंती लौटती हुई गई, ये बालक भी गए, वहां पर रहने वाले ऋषि मुनि भी आए, सबने देखा महाराज पांडु का तो देहावसान हो चुका था। कुछ क्षणों के लिए तो कुंती ने चिल करके माद्री को जड़ी-कटी बात सुनाई कि तुमने क्या। माद्री ने रो रो करके कहा कि मैंने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती। लेकिन कुंती का वह भाव क्षणिक था। सारे ऋषि मुनियों ने विचार किया अब क्या करना चाहिए, पहले तो इनका संस्कार करना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं ऋषि मुनियों ने की है। उस समय कुंती माता ने कहा मैं पति के साथ सहगमन करूंगी, मुझे सती होना है। माद्री ने कहा नहीं, मुझे होना है। भगवती कुंती ने कहा यह मेरा अधिकार है, मैं महाराज की ज्येष्ठ पत्नी हूं। माद्री ने कहा नहीं, यह दुर्घटना मेरे कारण घटी है, लेकिन इसके पश्चात माद्री माता ने एक विशेष बात कही जो बात आपको सुननी चाहिए। माद्री माता ने कुंती से कहा बहन हमें केवल अपना विचार नहीं करना है, हमारे पीछे अपने 5 बच्चे हैं, इन बच्चों का संगोपन अच्छा होना चाहिए और इन बच्चों का संगोपन समता की दृष्टि से होना चाहिए। मैं तुम्हें सच्ची बात बतलाती हूं, अभी भी मेरे मन में तुम्हारे और मेरे बच्चों के बीच में जो अंतर है वो जैसा का वैसा ही है। मैं सबको समान दृष्टि से देख नहीं सकती, लेकिन मुझे तुम्हारा विश्वास है कि तुम कभी भी भेद नहीं करोगे। एक साथ के बारे में बोल रही है। देवरानी जिठानी का संबंध कैसा होना, कितना विश्वास संपादन किया जा सकता है। कुंती माता के लिए माद्री माता कहती है मुझे मेरे मन का विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे मन का विश्वास है, आजीवन तुम्हारे द्वारा कभी भी मेरे बालकों के साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए तुम रहो, पीछे मैं रही तो मेरा मन पापी है, वो कभी तुम्हारे बच्चों पर अन्याय कर सकेगा। माद्री माता का यह विश्वास कितना सत्य था आपको क्या बताऊं। आजीवन महाभारत में कुंती माता ने सबसे अधिक प्रेम किया है वो सहदेव से किया है, छोटा बच्चा सहदेव। केवल कुंती माता ने किया होता तो भी मुझे कुछ विशेष लगता नहीं, लेकिन कुंती माता के तीनों पुत्रों ने भी इन बालकों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम सौतेले भाई हैं। मानव जीवन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन रिलेशंस। आज के संसार में जिसकी प्रतिष्ठा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो बात है हमारे आपसी प्रेम के संबंध। देखो हमारे जीवन में अध्यात्म न होने से उतनी बात नहीं बिगड़ती है, आध्यात्मिक होना सबके बस की बात भी नहीं होती है, लेकिन अध्यात्म के पहले आता है धर्म, और धर्म अर्थ है, धर्म नाम है ह्यूमन रिलेशंस का। व्हाट इज धर्म आफ्टर ऑल, इट जस्ट द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसी को धर्म कहते हैं। और कितना भी विज्ञान पढ़ने पर भी आप इसको जान नहीं सकते, वैज्ञानिकों की यह क्षमता नहीं है। विज्ञान ने हम लोगों को पंछी की तरह आकाश में उड़ना सिखाया, विज्ञान ने हम लोगों को मछली की तरह पानी में तैरना सिखाया, लेकिन विज्ञान हम लोगों को जमीन के ऊपर मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए ये सिखा नहीं सकता। ये काम धर्म का है, इसलिए विज्ञान के युग में भी धर्म की आवश्यकता नहीं, परम आवश्यकता है। विज्ञान के बल पर आप सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल सुविधाओं में सुख नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, लेकिन प्रेम करने वाली निष्ठावती पत्नी नहीं है, आज्ञाधारक पुत्र नहीं है, प्रेम करने वाला भाई नहीं है, सुख दुख में एक रूपता दिखाने वाला पड़ोसी नहीं है, तो सुख कैसे आएगा। और इसका मूल धर्म में है, जिसका अर्थ मानवीय संबंधों का शास्त्र है। माद्री माता ने पांडु के साथ सहगमन किया, ऋषियों ने मिलकर के विचार किया हमें क्या करना चाहिए, सोच करके उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। पांचों पांडवों को और भगवती कुंती को लेकर के और पांडु और माद्री के अस्थियों को लेकर के इन ऋषियों में से चुने हुए कुछ सैकड़ों में लोग वहां से चले हस्तिनापुर के लिए। ये सब हस्तिनापुर के बाहर रुके, हस्तिनापुर के बाहर रुक करके इन्होंने समाचार भेज दिए कि हस्तिनापुर के जो भी कार्यदर्शी है वो सब बाहर आ जाए, हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र और अन्य कुछ ऐसे लोग जब बाहर आकर के वहां पर इन ऋषियों से मिले, तब इन ऋषियों ने, उनमें से केवल एक ने खड़े होकर के एक भाषण किया, हस्तिनापुर के सारे लोगों को मैं एक बात सुनाने के लिए आया हूं और मेरे साथ मेरी सारी बातों से सहमत और प्रत्यक्ष दृष्टा ये सारे ऋषिमुनि आए हैं। आज से 17 दिन पूर्व, आज 17वां दिन है, 17 दिन पूर्व आपके महाराज पांडु का देहावसान मन में हो गया, उनकी एक पत्नी भगवती माद्री उनके साथ सती हो गई, उनकी ज्येष्ठ पत्नी भगवती कुंती और उनके ये 5 बालक ये सब हम लोगों के साथ इतने वर्षों तक रहे हैं, हम में जन्मे हम में पले, इन सब के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध रहा है, लेकिन अब इस दुखद घटना के पश्चात इन सब बालकों को उनकी मां के साथ आप तक पहुंचाना सुरक्षा के साथ ये हमारा कर्तव्य था। आज हम इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर आए हैं, अब इनको आप संभालिए। ऐसा के करके महाभारत में बड़ा विचित्र वर्णन है, ऐसा के करके वो एक एक व्यक्ति बोला और सारे के सारे ऋषिमुनि वहां के पीछे मुड़ करके चल दिए, एक ने भी पीछे देखा नहीं। जस्ट परफॉर्म द ड्यूटी, दैट्स इट, बात खत्म। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अपने कर्तव्य को पूर्ण करके उस बात से निस्संग हो जाना, ये हमारे प्राचीन ऋषियों का स्वभाव रहा। सारी बात को भीष्म ने सुना, धृतराष्ट्र ने, विदुर जी ने सुना, भगवती कुंती को और इन पांचों बालकों को और अस्थि कलशों को लेकर के ये सारे सत्यवती माता के पास पहुंचे। भगवती सत्यवती माता पांडु के निधन की बात को सुनकर के बहुत रोई। पांडु का जो क्रियाकर्म करने का विधान अवस्त्रापुर में आवश्यक था वो तो संपन्न हुआ। भगवान वेदव्यास जी महाराज एक दिन प्रातःकाल सत्यवती माता के सामने आकर के विराज खड़े हो गए। जैसे ही मां ने देखा, वेदव्यास जी ने प्रणाम किया, चेहरा उनका गंभीर था। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, मां एक बात बतलाने के लिए आया हूं, निर्णय आपको करना है, लेकिन जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। हस्तिनापुर का मंच अब संघर्ष के लिए तैयार हो गया है, अब आए दिन ऐसी घटनाएं घटने वाली है और इतना क्लेश यहां पर निर्माण होने वाला है, जिसको आप सह नहीं पाएंगे, आपका जीवन दुखमय होगा, आपके जीवन के ये अंतिम दिन है। एकांत में कहीं जाकर के भगवान की भक्ति करते हुए आपको अपना यह समय व्यतीत करना चाहिए। मैं केवल आपको सूचना देने के लिए आया हूं, क्या करना है इसका निर्णय आप कर सकती है। मां प्रणाम, वेदव व्यास जी चले गए। सत्यवती माता ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं को बुलाया, अंबिका और अंबालिका, ये भी विधवाएं थी। सत्यवती माता ने कहा, देखो बेटा, मुझे मेरे बेटे की बात में विश्वास है, कुछ तो भी अब यहां पर ऐसा घटते रहने वाला है जिससे हम लोगों को बहुत क्लेश होगा। जितना संसार करना था कर लिया, अब मेरा मन संसार से हट गया। मैंने तो यहां से निकल करके किसी अज्ञात आश्रम में जाने का निर्णय कर लिया है। आप दोनों स्वतंत्र हैं, चाहे तो मेरे साथ चल सकती है, चाहे तो यहां पर रह सकती है। आपको बिना बताए मैं जा नहीं सकती, इसलिए आपके सामने बात रखी है। अंबिका और अंबालिका दोनों ने कहा, नहीं मां, हम भी यहां रहना नहीं चाहती। दूसरे दिन प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय से पूर्व तीनों माताओं ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। पुनः कभी वे लौट करके नहीं आए। हमारा संसार, हमारा परिवार, यह इस जन्म का संसार है, इस जन्म का परिवार है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु होने के पश्चात संभले और आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत आत्मकल, क्योंकि इस संसार का, इस परिवार का जन्म जन्मांतर का थोड़ा ही संबंध है। किसी भी जीव का, किसी भी जीव के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध होता नहीं। जीव का केवल परमात्मा के साथ संबंध होता है, और इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण कर लेने के पश्चात जीवों को चाहिए कि वे भगवान के साक्षात्कार के लिए अपने जीवन को लगा दें। चली गई तीनों माताएं। अब रंगमंच पूरा तैयार हो गया। इस रंगमंच का जो वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने किया है, उसमें से धर्म का वृक्ष क्या है हमने देखा, अब अधर्म का वृक्ष भी खड़ा हो गया। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंद कर्णः शकुनिश्चास्य शाखा दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। इसका विस्तार से वर्णन मैं बाद में करूंगा। अब आइए, ये सारे के सारे बालक, पांचों बालक भगवती कुंती माता के साथ महाराज पांडु का जो राजमहल था वहां पर निवास करने लगे। अब क्या हो गया, अब ये सब कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य महाराज के पास पढ़ने जाते हैं। अथाप्तवंतो वेदोक्तान संस्कारान पांडवास्तदा संव्यवर्धन्त भोगांस्ते भुञ्जाना पितृवेश्वनि धार्तराष्ट्रैश्च सहिता क्रीडन्तो मुदिता सुखम् बालक्रीडासु सर्वासु विशिष्टास्तेजसा भवन् जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसु विकर्षणे। जनमेजय ने जो प्रश्न पूछा था, पहले जो हमने उसको देखा था, वो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथम तेषां समभवत् भेदमक्लिष्ट चेतसां। महाभारत के आरंभ में ही जनमेजय के द्वारा पूछा गया प्रश्न यह है कि महाराज, ये सब लोग अच्छे थे, इन लोगों में इस प्रकार का भेद निर्माण क्यों हुआ, उस भेद ने कलह का रूप क्यों लिया, उस कलह को रोका क्यों नहीं गया, और इतना वह कलह कैसे बढ़ गया जिसकी परिणति महायुद्ध में हो गई। धीरे धीरे वो कैसे बढ़ता गया है और उसके कारण क्या है ये जानना, इसके लिए महाभारत है। इसलिए ध्यान रखना, महाभारत के श्रवण से हमारे घर में कलह नहीं होता। बिना सुने क्या कम कर रहे क्या? उल्टे महाभारत इसलिए है कि महाभारत के सिद्धांतों की ठीक से जानकारी होगी तो कलह कैसे निर्माण होता है, वो क्यों बढ़ता है, कहां पर वो रोका जा सकता है और कैसे भीषण प्रसंगों को जीवन में नहीं निर्माण होना पड़ता, ये सारी प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। इसलिए महाभारत का श्रवण करने वाले के घर में संघर्ष नहीं होता है, वहां तो विजय ही विजय होती है। यही लिखा है महाभारत में, भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। ये महाभारत के अंतिम अध्याय का श्लोक बोल रहा हूं मैं। जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ होगा वो जहां जाएगा विजयी होकर के आएगा। अब देखिए इस कलह का आरंभ कैसे हुआ। ये कलह हम लोगों को लगता है कि ये युद्ध भूमि के लिए हुआ, राज्य के लिए हुआ, संपत्ति के लिए हुआ। यह संघर्ष संपत्ति का, भूमि का और राज्य का नहीं है। मूल इस संघर्ष का बीज हमारे संस्कारों में है, स्वभाव में है। नाउ कम टू इट, अब यहां पर क्या हो गया? सौ कौरव और पांच पांडव। वैसे टेक्निकली पांडव भी कौरव है क्योंकि कुरुवंश में ही सबका जन्म है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को कुरुनंदन कौन्तेय, कौन्तेय नहीं कुरुनंदन ऐसा कहते हैं। सभी कुरु के वंश में हैं, इसलिए कौरव सबका सामान्य नाम है, पांडव या पांडवों का पांच बालकों का विशेष नाम है। ये कौरव और पांडव साथ में कृपाचार्य महाराज के पास पढ़ने भी लग गए और अब साथ में सब बच्चे हैं तो खेलने भी लग गए। सबसे पहली बात क्या है, गलतियां कहां कहां हुई है इसको भी देखो। दुर्योधन आदि सब बालकों को लगने लग गया कि ये कौन आ गए हमारे यहां और ये हमारे भाई है और इस राज्य के अधिकारी है। आज तक इन बालकों का सारा सोचना ही स्वतंत्र था। यहां के राजा, यहां के राजकुमार तो हम ही है, हमारे कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन जब इन बालकों का आगमन हो गया तो अपने आप ही प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या निर्माण हो गई। होना क्या चाहिए था, आवश्यकता इस बात की थी, यदि कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति होता तो वह क्या करता। इन सारे पांडु तो निराश हो गए थे, जीवन में वैफल्यग्रस्त हो गए थे, इसलिए वे पुनः हस्तिनापुर कभी लौटना चाहते नहीं थे। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि कभी इन छोटे कौरवों को ले जाकर के पांडु के पास रखते। बचपन से ही उनको पता होता कि ये भी तुम्हारे भाई हैं और ये तुम्हारे चाचा। कौरवों ने कभी देखा ही नहीं पांडु को। ये जो मन का मिलन है ये कभी किसी ने करवाया नहीं। करवाते कैसे? अब बात को देखिए, पांडवों का जन्म कहां हुआ? वन में हुआ। यहां पर लिखा है, बालक क्रीडासु सर्वासु विशिष्टा तेजसा भवन। ये पांचों पांडव सौ के सौ कौरवों से अलग थलग पड़ते थे। उनका कौशल्य, उनका चापल्य, उनका बल, उनका तेज जरा विशेष लगता था। इट्स जस्ट नेचुरल। क्यों? पहली बात यह ध्यान में लीजिएगा, इन पांडवों का जन्म हुआ है वन में, बचपन बीता है सारा का सारा वन में। ये वनवासी बालक है पांडव, और ये सारे कौरव बंबैया है। अरे भाई, हस्तिनापुर उस समय की बंबई ही है। बंबैया कहने से आपके ध्यान में आ जाएगा ना एकदम, ये सब हाई फाई सोसाइटी में जन्मे हुए और पले हुए और बड़े हुए बालक हैं। अब देखिए, उस समय की बात छोड़ दीजिए, आज भी आप, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र का अनुभव है, आज भी आप शहर के बालक और देहात के बालक, देहात के बालक और वनवासी बालक, इनमें कंपैरिजन कीजिए। फैशन में तो शहर के बालक आगे रहेंगे, दैट्स फाइन, लेकिन भूख सहना, प्यास सहना, वेग से दौड़ना, बोझ उठाना, अरे 20 वर्ष पहले जब बंबई में हम लोगों ने बाल संस्कार शिविर का आयोजन करने का विचार किया, उस समय कुछ माताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछा था, आप जहां पर शिविर लेने वाले हैं वहां पर एसी की व्यवस्था है कि नहीं? तो कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं है, हमारे बच्चे बिना एसी के कैसे सो सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। 120 करोड़ भारतीयों में देहातों के बच्चों के पास जाकर के, अरे उनको घर भी ठीक नहीं है, हम एसी की बात, उनको फैन भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिजली भी नहीं है। अब ऐसे स्थान में जिन लोगों ने अपना समय गुजारा होगा, उनकी सहन शक्ति, मैंने 30 सर बताया आपको, एक तो शहरवासी, एक ग्रामवासी और एक वनवासी। कभी भी आप ये देखेंगे कि शहरवासियों से ग्रामवासी बालकों की सहन शक्ति क्षमता अधिक होती है, और ग्रामवासी बालकों से भी वनवासी बालकों की अधिक होती है। हम जब भी मिक्स कंपटीशन लेते हैं, आपको बतलाता हूं, कभी भी कोई भी शहर का बालक हमारे यहां सूर्य नमस्कार की स्पर्धा में पहला आया नहीं। सर्वदा आते हैं तो गांव के आते हैं, और गांव के बालकों को भी हरा देते हैं वनवासी बालक। आज भी पांडवों की विशेषताएं अस्वाभाविक नहीं है, पांडव वनवासी बालक है। सबसे पहली इसलिए शारीरिक सहने की क्षमता, अब वो वहां ठंड भी सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है। अरे आप अभी जाकर के उत्तराखंड की आपदा के वहां पर थोड़ी सहायता करने का प्रयास कीजिए, हम लोग वहां चल ही नहीं सकते, और वहां का बच्चा ही नहीं, वहां के बूढ़े भी ऐसे दौड़ जाते हैं पर्वत के पहाड़ के ऊपर, हमें तो सीधा बैठना ही मुश्किल है। आपको सत्य घटना बतलाता हूं, मैं जब तत्वज्ञान विद्यापीठ में पढ़ता था, तो बंबई के एक ब्राह्मण परिवार के एक बालक को उसके माता पिता ने वहां पढ़ने के लिए भेजा, उसको ये पालथी मारकर के बैठना ही नहीं आता था। उसने कहा मैं जीवन भर कभी जमीन पर बैठा ही नहीं हूं। बंबई का बालक, थाने के विद्यार्थी, गलती उसकी नहीं थी, सिचुएशन, उसको संस्कार ही नहीं है बेचारे को। कुर्सी पर बैठेगा, सोफा पर बैठेगा, पलंग पर बैठेगा, कार में बैठेगा। कौरवों में पांडवों में अंतर क्यों आया ये हम देखते हैं। शारीरिक क्षमताओं का अंतर इस कारण से आया। अच्छा, स्वभावों में अंतर क्यों आ गया? पांडवों का संस्कार ऋषियों ने किया, पांडवों के नामकरण ऋषियों के द्वारा हुए, पांडवों ने बचपन से ही अपने माता पिता को ऋषियों की सेवा करते हुए देखा। प्रवचन सुनने के लिए हमारे माता पिता बैठे हैं, ये बचपन से पांडव देखते आए, पांडवों को बचपन से ही प्रणाम करने की आदत है, श्रवण करने की आदत है, अच्छी अच्छी बातें उनके कानों पर बचपन में गई हैं, इसलिए उन्होंने वेद मंत्र सुने, शास्त्रों के वचन सुने, ऋषियों का व्यवहार देखा, पवित्र जीवन देखा, जो पवित्र देखता है वो पवित्र अपने आप होता जाता है। इसलिए पवित्र देखो, भद्रम करने विष्णुयाम देवाह भद्रम पश्ये माक्षिर यजत्रा। हमारे ऋषियों ने कहा आंखों से पवित्र देखना, कानों से पवित्र सुनना, वाणी से पवित्र बोलना, ये होता जाएगा तब मन पवित्र होगा। तो पांडवों के संस्कार तो ये है। अब आइए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में वैसे तो राजमहल में जन्मे है ये बालक, सबको संभालने के लिए नौकर चाकर है, अपने यहां होते हैं ना, सबको संभालने के लिए, कोई बात नहीं, उतना तो ठीक है। दुर्दैव इन बालकों का और क्या है, पिताजी अंधे हैं, एक बात, मां ने आंखों में पट्टी बांधी, गांधारी माता के पातिव्रत के भाव को प्रणाम करता हूं, उनकी महानता को स्वीकार करके वंदन करता हूं, लेकिन मेरी वृत्ति में उनका पट्टी बांधना उनको बड़ा महंगा पड़ा, ऐसा मेरे चिंतन के अंदर मुझे लगता है। मेरे पति मेरे बालकों को नहीं संभाल सकते हैं, मैं उनको संस्कार नहीं दे सकते हैं, तो मुझे अधिक जागरूक होकर के उनको संस्कार देने के लिए तो भी मेरे आंखों से पट्टी को हटाना चाहिए। यह यदि उनके ध्यान में आता तब तो मैं उनकी जागरूकता मानता। पिताजी अंधे, मां ने आंखों में पट्टी बांध ली, तो ये सारे बालक किसका भक्ष्य बन गए, घर में रहने वाले मित्र शकुनी फ्रॉम कंधार, मामा जी। और ये मामा ऐसा जिसको मारो काटो, उसकी भाषा ही वैसी, सारे कौरवों के शब्दों में आप देखेंगे उनकी सारी भाषा बिगड़ गई, ये शकुनी के कारण बिगड़ी। अच्छा, छोटे बच्चे ऐसा है, छोटा बच्चा अपने सामने जो देखता है वो वैसे ढलता जाता है। पांडवों ने ऋषियों को देखा, इन्होंने शकुनी को देखा, अब शकुनी को देख करके कौन से संस्कार आ सकते थे, ध्यान में आ गया ना। अब थोड़ा सा अपने मन में एक विचार लाइए, हमारे बालक क्या देखते हैं। शकुनी तो भी ठीक था, पर्दे के ऊपर जो दिखता है ना वो कार्टून तो बहुत छोटे बालक देखते हैं, थोड़े बड़े होने के पश्चात दूसरे कार्टून देखते हैं। मूलतः संस्कारों का अंतर है। जीवन में परिवार में यदि संघर्ष निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं, सबसे पहले संस्कारों का सिंचन आवश्यक है, इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। संघर्ष कथम भेदस्तम भवत, भेद कैसे निर्माण हुआ, यह प्रश्न। कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
गोविंद नारायण रे,
कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण
గోవింద నారాయణ రే
కృష్ణ ముకుంద జనార్దన కృష్ణ గోవింద నారాయణ రే
కృష్ణ గోవింద నారాయణ రే
కృష్ణ గోవింద నారాయణ రే
महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं राजन कौरव और पांडवों का अब साथ में थोड़ा पढ़ना और खेल खेलना आरंभ हुआ। बड़ी विशेष बात यह थी कि इस खेल खेल में भीमसेन सबके लिए बड़े भारी पड़ते थे। अब भीमसेन मूलतः अत्यंत मजबूत है, बलवान है, जन्मतः ही है। भीमसेन कितने बलवान और कितने मजबूत है इसका एक प्रसंग महाभारत में आया है। वन में इस छोटे से भीम को अपनी गोदी में लेकर के कुंती माता बैठी है, एक पाषाण के ऊपर बैठी थी और हुआ इसे एकदम एक सिंह ने गर्जना की, सिंह ने गर्जना की तो एकदम कुंती माता उठ करके दौड़ी घबरा करके, भीमसेन उसके हाथों से गिर गए, कुंती दौड़ी। इतने में सामने से धनुष लेकर के महाराज पांडु आ गए, कुंती को आश्वस्त किया, रुक गई कुंती। लेकिन महाराज पांडु और भगवती कुंती दोनों को चिंता ये हो गई भीम गिर गया, पता नहीं कितनी चोट आई। ये देखने के लिए माता पिता वहां पर जाकर के देखते हैं, छोटा सा शिशु भीमसेन तो खेल रहा है और चट्टान टूट गई है। वायुपुत्र भीमसेन का यह बल जन्मजात बल है। अब यह भीमसेन का स्वभाव भी थोड़ा सा खिलाड़ीपन का है, नटखट है ही। दसों बीसों कौरवों को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके धकेलते ले जाते, गिरा देते, ऊपर चढ़ गए कहीं पेड़ के ऊपर ये कौरव, तो नीचे से भीमसेन उस वृक्ष के तने को पकड़ करके ऐसा हिलाते कि जैसे फल ऊपर से नीचे टपक जाए वैसे टप 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 गिर जाते। प्रहार वेगाभियता द्रुमा व्याघूर्णिता तथा सफला प्रपतंति स्म द्रुत वसंत कुमस्क कुमार का। जब भीमसेन सबकी कौरवों की आंखों में चुभने लग गया, अब यह भीमसेन की अल्लड़ता थी। इसने देखो ये अल्लड़ता है, इसने कोई घात करने की अथवा किसी को कोई कष्ट देने की वृत्ति है, हंसने हंसाने का चलता है बच्चों में, ऐसा था। लेकिन शकुनी मामा आदिकों का जो स्वभाव दुर्योधन आदिकों ने देखा था, उनके मन में खुन्नस निर्माण हो गई, क्या करना चाहिए इस भीम का, मारो खत्म, बंबई का शब्द, कैसे करना, विस्तार से कथा नहीं कहूंगा, कथा का संदेश क्या उसको थोड़ा ज्यादा देखते जाएंगे, वही ठीक है, उतना समय भी नहीं। विस्तार से ही महाभारत की कथा सुननी है तो महीने भर की महाभारत की सीढ़ी की, उससे आप आराम से सुन सकते हैं, एक महीना 6 घंटा रोज। ये कथा मैंने ऋषिकेश में की थी 2 वर्ष पहले, सुनने जैसा तो ये सब कुछ। तो भीमसेन आदिकों ने विचार किया, प्रमाणकोटी नामक के स्थान पर वन विहार के लिए पिकनिक के लिए छुट्टी के समय ये सारे बालक गए, राजकीय व्यवस्था में रहे। भीमसेन को अपने पास बैठा करके प्रेम से भोजन कराते हुए दुर्योधन ने उनको जहर के लड्डू खिला दिए, जो उसने पहले से अपने रसोई से तैयार करवा करके रखे थे। अल्लड़ता एक अलग बात होती है और ये अपराधी मनोवृत्ति अलग बात होती है, ये क्रिमिनल है। जैसे ही भीमसेन ने उन लड्डुओं को खाया, अब इनका बहुत देर तक ये तमाशा चल रहा था, हंसी मजाक खाना पीना। अब दुर्योधन, दुशासन और भीमसेन तीनों बढ़िया खवैया है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया खाना भी चाहिए। तो धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको पता था कि भीम का ऐसा ही है। अब भीमसेन के खाने की बात क्या बतावे, जब भी कोई मिष्टान्न अच्छा तैयार होता था तो कुंती माता आधा पहले इसे अकेले के लिए निकाल करके रखती थी, बाकी बचे हुए आधे में बाकी लोगों का शेयरिंग। तो था भाई इसमें क्या है। तो ये सब जाकर के सो गए थे। इधर जहर के लड्डुओं का प्रभाव होने के कारण जैसे ही भीमसेन को ग्लानि आने लगी, दुर्योधन, दुशासन और अन्यों ने मिलकर के लताओं से, वेलियों से इसको बांधा और गंगा जी के हृदय में पटक दिया। बड़े जलाशय में जैसे उसको गिराया गया, अब वहां क्या हुआ बाद में देखेंगे। इधर तो प्रातः काल में जब ये बालक जगे तो धर्मराज ने देखा कि अरे भीम कहां है, तो आकर के इनसे पूछो, भाई उनके पास थे, हम लोग सो गए थे। दुर्योधन ने कहा अरे भोजन किया और वो चला गया। हाँ, कहता था भाई कि सवेरे में जल्दी उठ करके जाने वाला हूं, मुझे कुंती माता की बहुत याद आती है। मुझसे कहे बिना भीमसेन कभी नहीं जाएगा, ये धर्मराज का अनुभव रहा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कुछ बोले नहीं, बात को केवल सुन लिया और जल्दी चले कि वास्तव में कुंती माता के पास ये पहुंचा है कि नहीं। कौरवों को तो आनंद हो रहा था कि गया, खत्म, वो तो दिवाली मना रहे थे। ये सारे चारों पांडव जब आकर के पहुंचते हैं, धर्मराज ने कुंती माता से पूछा, मां भीम आया? कुंती माता ने कहा नहीं। सबको संशय हो गया, कुंती माता व्याकुल हो गई। कुंती माता का एक अनुभव था कि मेरा भीम इन सब की आंखों में छुपता है, आज क्या हो गया उसको, किसके पास रोए भी, किससे कहे भी। पूरे हस्तिनापुर में कुंती माता संपर्क कर सकती थी ऐसा एक ही धर्मात्मा था विदुर। विदुर जी को बुलाया, कुंती माता ने सारी बात कही। विदुर जी ने कहा, भाभी थोड़ा धैर्य रखो, भीम जैसे बालक ऐसे मरने के जन्म नहीं लेते हैं। आप इस बात को किसी के साथ करना भी मत। जहां तक मेरा अनुमान है, भीमसेन जल्दी लौट करके आएंगे, तुम सावधान रहना। कुंती माता भगवान की आराधना करती है। इधर क्या हुआ, भीमसेन को जैसे ही गिराया, अब इतने बड़े भीम के नीचे तैरने वाले बहुत सारे सर्प एकदम से कुचल दिए गए। कुचलने के कारण सर्पों को बड़ा रोष आया और सांपों ने भीमसेन को अत्यंत वेग से दंश करना आरंभ किया। जितने सांप डसने लगे उतना जहर उतरने लगा। विषस्य विषम औषधम। और जैसे ही भीमसेन की तंद्रा गई और सावधान हुए, तो ये लताएं क्या थी उसके लिए, जो तटास्थ तोड़ करके एवं उन सर्पों को कुचलना भीमसेन ने आरंभ किया। भीमसेन का सर्पों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। अब ये सारी घटना जब बड़े बड़े सर्पों ने जाकर के वासुकी से कही, सुनकर अरे कौन उसको लाओ, द्वितीय पांडव भीम, उसने कहा उसके साथ युद्ध नहीं करना, उसको बुला। अरे हमारा तो उसका ननिहाल का पक्ष है। भीमसेन को बुलाया गया प्रेम से, कहा कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हो गया तुम यहां पर आए, यहां पर आए तो उसको कुछ देना भी चाहिए। अब्रवीत तंच नागेन्द्र किमस्य क्रियताम प्रियम, उपहार देना चाहिए। क्या उपहार देना चाहिए? ननिहाल में बच्चा जाता है तो कुछ कुछ लेकर के आता है ना लेने से, इसको सोने की चेन दे या अंगूठे, ये सारी बात नहीं। नागों ने विचार किया अरे वीर है, योद्धा है, यह अधिक बलवान कैसे होगा, ये इसको कुछ देना चाहिए। सोच करके वे उन कुंडों के पास ले गए जहां अत्यंत विलक्षण रसायन भरा हुआ था। भीमसेन से कहा देखो ये सारे जो कुंड है ना, इनमें दिव्य रसायन है, अमृत जैसा, हाँ, इसका प्राशन करने से अपने आप हाथियों का बल अपने भीतर आता है। भीमसेन ने पूछा कितने हाथियों का आता है? तो एक कुंड को पीने से 1000 हाथियों का बल आता है, तुम्हें कितने प्यारे चाहिए? भीमसेन ने कहा मैं प्यारे वाले से तो कभी जीवा ही नहीं, चम्मच से दूध पीने वाले हम लोग, घी तो खाना ही बंद कर दिया लोगों ने, अगली पीढ़ी में घी इत्र की बोतल में मिलेगा, ऐसा करमपुटा समाज निर्माण हो गया। भीमसेन ने कहा ये चम्मच और प्याले और कटोरी ये मेरे लिए नहीं है, तुम क्या करोगे? कहा मैं एक पूरा कुंड पी जाऊं तो आपको कोई आपत्ति नहीं? एक बात सुनो, हम बताना भूल गए, इसके पीते समय दोबारा सांस नहीं लेनी होती है। भीमसेन ने कहा मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और भीमसेन ने जो एक कुंड को मुख लगाया पूरा पी करके ही दोबारा सांस ली। सारे नाग देखने लग गए, भीमसेन ने कहा और चाहिए, 2, 3, 8 कुंड भीमसेन पी गए। सारे नागों की तो एकदम आंखें चौंधियाने लगी कि ये कैसा आदमी आया। वासुकी ने कहा बेटे धन्य हो तुम, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, तुमने 8 कुंड प्राशन किए हैं, 8 दिन तक तुम्हारी नींद खुलेगी नहीं। भीमसेन ने कहा काम ही कहीं है। अपने को कहा लोकल पकड़नी है। बढ़िया शैया के ऊपर भीमसेन को सुला दिया गया, 8 दिन भीम उठे ही नहीं, लेकिन जब भीमसेन उठे तब 8000 हाथियों का बल उनके भीतर संचालित हो गया था। ध्यान रखना धर्मात्मा पुरुषों के साथ किए गए षड्यंत्रों में से वे ऐसे बाहर निकलते हैं, अपने बल को अधिक बना करके ही बाहर आते हैं। सबको अभिवादन करके भीमसेन चले और जैसे वे कुंती माता के पास दौड़ते आकर के पहुंचते हैं, कुंती माता के नेत्रों से छर-छर आंसू बहने लगे। घटी हुई सारी घटना भीमसेन ने अपने भाइयों को बता दी। धर्मराज ने कहा भीमन एक बात ध्यान रखना, इस बात का उल्लेख कहीं पर भी मत करना। खुन्नस के कारण और तुम्हें मारने का प्रयास हो जाएगा। लगभग तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ तो भी हो गया, भगवान की कृपा से बच गए, ऐसा बोल देना। कोई चर्चा चले तो भी न किसी के ऊपर आरोप लगाना और न कोई अधिक बात करना। सिक्योर रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या कैसे रहना चाहिए, अपने सत्ता जब विपक्ष के हाथों में है, पापियों के हाथों में है, और हम लोगों को सुरक्षित रहकर के समय काटना है ताकि योग्य समय पर हम लोग प्रकट हो सके, तो कैसे थोड़ा लो प्रोफाइल में रहकर के जीवन काटना चाहिए, उसकी सारी शिक्षा विदुर जी ने यहां पर दी है और धर्मराज ने उसको अपनाया है। आदि पांडव यदि हाई प्रोफाइल में रहना चाहते हैं ना तो वो काटे ही जाएंगे, दूसरा षड्यंत्र होगा, उनके न रहने पर भी हुए हैं। कृपाचार्य महाराज का अब पढ़ा रहा चल रहा है, बालक चल खेल रहे, भीष्म को ऐसे लगता है कि ये सारे बालक पढ़ तो रहे कृपाचार्य के पास, लेकिन इनका कल्याण सही सही कल्याण ऐसे नहीं होगा। वास्तव में तो इनको सर्वोच्च गुरु से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सर्वोच्च गुरु कौन है उस समय संसार में धनुर्विद्या के? आचार्य द्रोण। लेकिन आचार्य द्रोण हस्तिनापुर आना नहीं चाहते थे। यह सारा ही प्रकरण अत्यंत मनोज्ञ और भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालने वाला है। महात्मा विषमपायन वर्णन करते हैं, द्रोणाचार्य का अपना जीवन कुछ अलग जीवन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। ये श्लोक आप सब लोग जानते हैं। धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान, इसका अर्थ क्या है, इसको समझना आवश्यक है। धर्म को ग्लानि आने का अर्थ, लोगों ने चोटी रखना बंद कर दिया था और तिलक धारण करना बंद कर दिया था ऐसा केवल नहीं है, मंदिर में जाना बंद कर दिया था ऐसा केवल नहीं है। यह सारा कर्मकांड तो दुर्योधन भी करता है। धर्म का मुख्य अर्थ हमारे यहां पर है जीवन मूल्य, वैल्यूज, और इन जीवन मूल्यों का अधपतन कैसे हुआ, इसकी बड़ी विकट गाथा महाभारत से पता चलती है। थोड़े में बतलाऊंगा कैसी अवस्था थी, जरा विचार करो। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जिस समय हुआ उस समय चारों ओर से पापियों से यह देश घिरा हुआ है, सारे सत्ताधीश पाप मूर्ति। थोड़े अपवाद छोड़ दीजिए, सब पाप के पुंज ही खड़े हैं। ऐसे दंतवक्त है, विदुरत है, शाल्व है, पौंड्रक है, शिशुपाल है, इन सब का नेता जरासंध है। एक जरासंध ने अपने राज्य के कारागृह में 20,000 क्षत्रियों को बिना किसी अपराध के बंद करके रखा है। उनका अपराध क्या, अपराध करने का कोई बात नहीं, राजा की मर्जी। उनमें से 86 राजा है। जरासंध से जब पूछा जाता है काय को इनको बंदी बनाया, अरे लोग यज्ञ करते हैं तो बकरों का बलिदान करते हैं, मैं तो इतना बड़ा यज्ञ करने वाला हूं, 100 राजाओं का मैं बलिदान करने वाला, 86 मिल गए, 14 और ढूंढ रहा हूं। 100 राजाओं का बलिदान, सच ए हीडियस एम्बिशन। ये इधर उधर नरकासुर ने 16,000 क्षत्रिय कन्याओं को बंदी बना करके रखा। किसलिए बनाया बंदी, ये लड़कियों का व्यापारी है। ऐसे शब्द बोलते समय बुरा भी लगता है, लेकिन यह समाज की स्थिति थी और यह समाज की स्थिति आज भी है। 5-7 महीने पहले मैंने स्वयं अचानक एक टीवी की स्क्रीन पर देखा, बंबई में ही उन लड़कियों को पकड़ा गया था जो भेजी जा रही थी मिडिल ईस्ट। उस निवेदिका ने यह भी कह दिया, ये तो बंबई के यहां पर पकड़ ली गई, लेकिन इसके मुख्य भेजने के निर्यात के केंद्र है मंगलोर और हैदराबाद। आश्चर्य की बात है, इस वार्ता को वहीं पर दबा दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन उसने उस दिन तो यह सब बता दिया। ये मैंने स्वयं देखा और सुना है। प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर ये लड़कियों का व्यापारी है। 16,000 जितनी संख्या में क्षत्रिय कन्याएं बंदी बनी, 20,000 क्षत्रिय बंदी बनाए गए, 86 राजा बलराम के लिए पकड़ करके रखे गए, उनको कोई छुड़ाने वाला है नहीं क्या? छुड़ाने का विचार करने वाला ही मारा जाता है, क्योंकि सारे गुंडों का संगठन है और जब कोई एक सज्जन ऊपर सिर करता है ना, सारे गुंडे मिलकर के उसको खत्म। और बड़ी विशेष बात, हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र ने जो नियम रखे थे, उन नियमों में द्रोणाचार्य महाराज क्यों आकर के नहीं करना चाहते हैं हस्तिनापुर में सेवा? संसार के सबसे बड़े विद्वान हैं वो, धनुर्विद्या के, लेकिन उनको एक बात जस्ती नहीं, वे कहते नहीं, ब्राह्मण को राज्य सेवा नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र ने ब्राह्मण को राज्य सेवा करने से रोका। क्यों रोका? इसलिए रोका कि संसार में कुछ लोग तो भी ऐसे होने चाहिए जो कभी बिकेंगे नहीं, और जो राजा की सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है ना, वो अपने आप राजा का अंकित हो जाता है। ब्राह्मण का सबसे मुख्य व्रत यह होता है कि उसको सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के साथ समझौता नहीं, यह ब्राह्मण का मुख्य व्रत। और यदि अपने मुख में सत्य ही आवे, ऐसा साहस अंतकरण में रखने की इच्छा हो, तो उसको परहेज करना पड़ता है राजा के अंकित होने से, किसी के भी अंकित होने से। महाभारत का सिद्धांत है, अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्तर्थो न कस्यचित्। अपने मालिक के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। यदि ब्राह्मण राज्य सेवा करता है या जिसकी भी सेवा करता है, उसके पापों का समर्थन वो करे चाहे ना करे, कम से कम उसका विरोध तो नहीं कर सकता। आपकी भाषा में बोलूं, सरकार से ग्रांट लेने वाली संस्थाओं के संचालक सरकार के पापों का विरोध खुलेआम नहीं कर सकते। ये आज की स्थिति है कि नहीं, बोलो? अरे सरकार इतना पाप कर रही है, तुम्हारी बात साची छे, पर हमारी संस्थानो शू ग्रांट तो त्याती आवे छे, ये है ना, चुप रहना पड़ता है। और चुप रहने की बारी लाने के लिए ही सरकारें और पापी लोग ऐसे लोगों को परचेस किया करते हैं। सब लोग हमारे अंकित हो जाए, कोई विरुद्ध बोल नहीं सके। द्रोणाचार्य महाराज नहीं चाहते थे कि ये हो, इसलिए एक श्लोक मनुस्मृति में, श्रीमद् भागवत में और महाभारत में कॉमन आता है, उत्तम ब्राह्मण को कभी किसी के अंकित नहीं रहना चाहिए। प्रतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम अपिवा नश्ववृत्या कदाचन। ब्राह्मण का यही व्रत है। वो कैसे जिएगा? तो कहा वो भिक्षा मांग करके जी सकता है, चाहे तो व्यापार करके भी जी सकता है, याचना करके घर घर जाकर के भी मांग सकता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। राजा की नौकरी तो कभी नहीं करनी चाहिए। देयर विल बी सम पीपल एट लीस्ट इन द सोसाइटी हु कांट बी परचेस्ड एट एनी कॉस्ट, दे विल स्पीक द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ एंड द होल ऑफ द ट्रूथ। ऐसा कोई तो होना चाहिए देश में, लेकिन जिसको ऐसा होने की आकांक्षा होती है ना, उसको सबसे पहले सावधान रहना पड़ता है, अपने जीवन को सादगीपूर्ण रखना। जीवन को सादगीपूर्ण न रखने वाले को अपनी व्यवस्था के लिए भी लोगों के धन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और धन के ऊपर निर्भर करने की बारी आई कि अपने आप पाप का समर्थन करना ही पड़ता है, कम से कम चुप रहना पड़ता है। और इसलिए आप देखेंगे भारतीय जीवन मूल्यों को समझो, महाभारत समझने का अर्थ क्या है, धर्म समझने का अर्थ क्या है। चंद्रगुप्त के पास विदेशी लोग आए आपके गुरुजी के दर्शन करने, चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है जाओ, और वो ग्रीक लोग चकित हो गए कि ये एक कुटिया है, उसमें एक अग्निकुंड है, एक मोटी छोटी वाला ब्राह्मण बैठा है, पास में ग्रंथ है और कुछ संविधाएं हैं, वो कुछ पढ़ रहा है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी? नो प्रॉपर्टी। ये चाणक्य का जीवन है, ये चाणक्य का जीवन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु होकर के भी समर्थ रामदास स्वामी ने झोली लेकर के भिक्षा मांगना त्यागा नहीं, वे किसी के अंकित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा भिक्षा शुद्ध अन्न है, क्योंकि भिक्षा के रूप में जब कोई ग्रहण करता है तो वह उसका गुलाम नहीं होता, लेकिन जब चाकरी करता है या ग्रांट लेता है तो अपने आप उसका गुलाम हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को किसी का भी, साधु को किसी का भी अंकित नहीं रहना चाहिए, न किसी सेठ का, न किसी सरकार का और न किसी पार्टी का। साधु का, ब्राह्मण का मालिक तो एक परमात्मा है, और अपने गुरु है और अपने शास्त्र है, बात खत्म। जिसके जीवन में यह सादगी है उसकी वाणी ही केवल तेजस्वी हो सकती है, सत्य वही बोल सकता है, नहीं तो बोलते समय विचार करना पड़ता है ये कितना महंगा पड़ेगा, इसका परिणाम क्या होगा, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। द्रोणाचार्य महाराज, अरे ब्राह्मण ऐसे होते थे, धर्माचार्य ऐसे होते थे, इसलिए वे राजा का नियंत्रण कर सकते थे। और इन ब्राह्मणों का फिर पालन कैसे होता था, क्षत्रिय कैसे पतित हुए हमने देखा। द्रोणाचार्य के रूप में ब्राह्मण का पातित्व भी मिलता है, लेकिन उनको भी पतित होने के लिए बाध्य किया है वैश्यों ने। द्रोणाचार्य महाराज स्वयं, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा, पत्नी का नाम कृपी। कितनी विचित्र घटना है ये, कितने महान विद्वान को, जो धनुर्विद्या का सर्वोच्च विद्वान है, अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए गाय की व्यवस्था नहीं करना हुआ। ये क्यों हुआ? द्रोण का मांगने का स्वभाव नहीं था, और मांगे बिना देने का सेठों का स्वभाव नहीं होता है। बंबई अपवाद है। रामा जी के जीवन में अयाचक व्रत था, द्रोण के जीवन में अयाचक व्रत है, अश्वत्थामा ने दूध पीने को मांगा, आटा घोल करके कृपी ने उसको पिला दिया। दुर्दैव यह था इस अश्वत्थामा ने अपने मित्र के घर पर एक बार असली दूध पिया। असली दूध पीने पर उसके ध्यान में आया कि मेरी मां मुझे क्या पिलाती है। धन्य भारत की नारी, गरीबी में संसार कैसे किया जाए, इज्जत को रख करके, ये भारत की माताओं से सीखा जा सकता है। लेकिन आज वो क्या कर सकती थी, जब उसका बच्चा ये कह रहा है मुझे ये दूध नहीं, मुझे वो दूध पिलाओ जैसा मैं पी करके आया हूं। मां समझा रही है, बेटा मानता नहीं है, पिताजी बाहर बैठे हैं। अच्छा, बड़ों को समझाया जा सकता है, छोटे बच्चे हट करते हैं ना तो समझाना भी मुश्किल होता है। अच्छा, रो किस लिए रहा है? टीवी के लिए नहीं रो रहा है, मोबाइल के लिए नहीं रो रहा है, चुल्लू भर दूध के लिए रो रहा है। जोर की आंखों में आज आंसू आ गए। इतना पढ़ करके मैंने क्या पाया, इतनी विद्या प्राप्त करने के उपरांत यदि मेरा बच्चा दूध नहीं पी सकता है। अच्छा, हस्तिनापुर के बुलावे आते ही है, हस्तिनापुर के जो गुरु है कृपाचार्य महाराज, वे द्रोण के साले हैं। कृपाचार्य अपनी बहन को और बहनोई को वहां पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन द्रोण तत्वनिष्ठ है। द्रोण के ध्यान में एक बात आई, द्रोण के मित्र है द्रुपद। बचपन में दोनों साथ में पढ़े थे। द्रुपद कहा करते थे, द्रोण जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मेरे राज्य का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा। अरे हम मित्र हैं ना, हम दोनों साथ में रहेंगे। द्रोण ने अपनी पत्नी से कहा और पुत्र से कहा, बेटा रो नहीं, अपने मित्र के पास जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। इस आशा से पत्नी को और पुत्र को लेकर के द्रोण महाराज द्रुपद के पास गए, कृष्ण के पास सुदामा गए। तब क्या हुआ, इस बातों को आपने खूब सुना है, सब कृष्ण नहीं होते हैं। दूसरा भी व्यवहार देखो, जैसे द्रुपद ने जाकर के, द्रोण ने जाकर के मिलते ही द्रुपद से कहा, रे सखा, द्रुपद ने एकदम उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ए पंडित, भगवान सखा कैसे हो सकता हूं, ठीक से बोला नहीं आता है क्या? द्रोण को धक्का लगा, पत्नी साथ में है, बेटा साथ में है, थोड़ा संभल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसे बचपन के संस्कारों से मैं बोल गया और कोई बात नहीं, बचपन में अपनी मैत्री थी वो तो ठीक है, अब थोड़ी हो सकती है। तो द्रोण ने कहा, मैत्री क्यों नहीं हो सकती? द्रुपद ने कहा, राजा का मित्र वो ही बन सकता है जो राजा है, समझे? अरे द्रुपद भैया, तुमने स्वयं मुझसे कहा था बचपन में कि मेरे राज्य का एक टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगा, मैं इसलिए चला आया। राज्य का टुकड़ा? अरे बामन, तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? जो मुंह में आया बक रहे हो? ब्राह्मण हो, अपमान नहीं करना चाहता हूं, इतना बोल तो दिया पहले ही, फिर कहता अपमान नहीं करना चाहता हूं, एक समय का भोजन करो और जाओ। आते समय द्रोण ने द्रुपद के यहां पर जाने के बाद अपना क्या क्या सम्मान होगा इसका सारा चित्रण किया था। ये जो धक्का लगा, आज लौट लौटते समय द्रुपद का हृदय टूट गया। द्रुपद की तत्वनिष्ठा ने समझौता स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। अरे होता है ऐसा, मानवीय स्वभाव है। एक समय वो भी आया था जब महाराणा प्रताप का भी अंतकरण समझौता करने के लिए थोड़ा मुलायम बन गया था। जब बेटे के हाथ की रोटी लेकर के बिराव भाग गया और भूखा बेटा रोता रहा, तो प्रताप को भी लगा कि मैंने क्या मिलाया। समझौते का पत्र लिखने के लिए प्रताप ने कलम भी अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन धन्य भारत की नारियां, पत्नी ने जाकर के नाना प्रताप की कलाई को पकड़ लिया। राणा जी क्या करना चाहते हैं आप? हमारे धर्म का गौरव है, हल्दी घाटी में मरे हुए सारे वीर आपकी इस आम को ध्यान में रखकर के मरे। मैं आपको संधि पत्र लिखने नहीं दूंगी, और संधि पत्र लिखना है तो आपकी तलवार मुझे दे दीजिएगा, कल आपका और मेरा सामना होगा। मैं धर्म के लिए लड़ूंगी, आप चाहे उनके लिए लड़े। पत्नी हो तो ऐसी तेजस्वी, और धन्य है भामाशाह जिसने अकूट संपत्ति लाकर के खड़ी कर दी। राणा जी ये धन आपके पूर्वजों का है, सेना खड़ी कीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि आपके झुकने से सारा देश झुक जाएगा। तो प्रताप के भी मन में तो आ ही गया था ना, द्रोण के भी मन में आया। ये मनुष्य के जीवन के नाजुक क्षण होते हैं। चलते चलते अकेले द्रोण आकर के हस्तिनापुर पहुंची, लेकिन देखो फिर भी वो जाकर के भीतर मिले नहीं है, बाहर धर्मशाला में रुके हैं। सायंकाल की बेला कौरव पांडवों का खेल चल रहा था, और खेलते खेलते उनकी गेंद बावड़ी में गिर गई। गेंद गिर गई तो खेल रुक गया। धर्मशाला के बाहर बैठा हुआ एक ब्राह्मण हमें देखकर के हंस रहा है, ये कुछ बालकों के ध्यान में बात आई। जाकर के पूछा, क्यों जी महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहा, अरे आप धनुर्विद्या सीखते हैं ना? हाँ। फिर आपको बावड़ी में से गेंद निकालना आया नहीं? तब इन बालकों के ध्यान में यह नहीं आया कि बावड़ी में से गेंद निकालना और धनुर्विद्या सीखना इसका संबंध क्या है। तो एक बालक बोल गया, फिर आपको निकालना आता है क्या? द्रोण ने कहा, थोड़ी घास ले आओ, घास के तिनके। द्रोण ने एक तिनका लिया, अभिमंत्रित किया, नीचे डाल दिया। बालक देख रहे वो उस गेंद से चिपक गया, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, तिनके से तिनका अपने आप चिपकता गया, और अंतिम तिनके को पकड़ करके द्रोण ने गेंद को बाहर खींच करके ले लिया। सारे बच्चे देखते रह गए, कहा यह धनुर्विद्या के अंतर्गत आता है? तब महाराज आप कौन है? अरे छोड़ो ये बात नहीं, लेकिन इतना काम आपने किया, आपको हम क्या दें? सारे बच्चे थे। द्रोण ने उत्तर किया, दिया पता है, मैं कल से भूखा हूं, मुझे एक समय का भोजन दे दो। मैं भूखा हूं, भूखे रह करके इस देश के ब्राह्मणों ने विद्या की रक्षा की थी। उनके वंशज पता नहीं आज क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे बालक दौड़ते हुए गए भीष्म। अच्छा बालक पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम आपके दादाजी जानते हैं, उनसे पूछ लो। बालक दौड़ते गए, अर्जुन सबके आगे, दादाजी 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 करते करते सब बालक बन गए। आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या देखा, सारी घड़ी घटना बता दी। अब भीष्म के चारों सब बैठे, कोई गोदी में, कोई इधर कोई उधर, और सब बतला रहे। और दादाजी जब हमने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उनका मेरा नाम आपके दादाजी जानते हैं। क्या है उनका नाम? भीष्म सावधान हो गए कि एक द्रोणाचार्य को छोड़कर के कोई नहीं कर सकता। विदुर को बुला, विदुर जी को बुलवाया गया, कहा विदुर तुम जाओ। द्रोण आचार्य द्रोण बाहर आकर के रुके, हमारा सौभाग्य है। विदुर जी ने जाकर के द्रोण को अत्यंत सम्मानपूर्वक हस्तिनापुर में लाया, और भीष्म ने कहा आज मेरा हस्तिनापुर धन्य हुआ, आज संसार की सारी विद्या मेरे गांव में, मेरे शहर में आई। द्रोण विद्या की मूर्ति है। दूसरे ही दिन रहने के लिए महल मिल गया, दूसरे ही दिन रथ मिल गया, सारी सेवाएं मिल गई, और गुरानी को लाने के लिए, द्रोण की पत्नी को लाने के लिए रथ भेजा गया। ओहो, क्या ताम झाम के साथ आचार्य पत्नी को और अश्वत्थामा को वहां पर लाया गया। सब राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। समृद्धि तो आई, लेकिन गुलामगिरी का पट्टा भी गले में आया, और इस गुलामी के पट्टे का ही परिणाम यह था कि द्रौपदी के चीरहरण के समय द्रोण कुछ नहीं बोल सके, जान करके भी। अन्न खाया ना, पेशीट पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कैसे बोल सकते विरुद्ध? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये द्रोण ने स्वयं कहा। संपूर्ण महाभारत में अलपतित ब्राह्मण्य का रूप है द्रोण, लेकिन ये द्रोण का अधपतन हुआ, इसमें बहुत बड़ा कारण है वैश्यों का पतन। वैश्य को लगता है कि सारी संपत्ति मेरी है। ध्यान रखना, संपत्ति का संग्रह और संवर्धन करने का अधिकार धर्मशास्त्र ने केवल वैश्य को दिया, लेकिन वो इसलिए दिया कि वैश्य को सर्वदा ये मानना चाहिए संपत्ति भगवान की है, मेरे पास संभालने के लिए रखी हुई है, भगवान के कार्यों में लगनी चाहिए। संपत्ति मेरी है, मैं उसका मालिक हूं, ये भूमिका आते ही घर में व्यसन आते हैं, बर्बादी का मार्ग खुल जाता है। आचार्य द्रोण के मार्गदर्शन में कैसा दिव्य अनुभव, कैसा दिव्य शिक्षण पांडवों ने ग्रहण किया। पांडवों के संस्कार सारे संसार में कैसे प्रकाशित हो गए, इन सारी वार्ताओं को आइए हम कल देखेंगे। महाभारत की कथा जीवन मूल्यों की कथा है, महाभारत की कथा मानवीय प्रवृत्तियों की कथा है, महाभारत की कथा मानवीय स्वभाव के विचित्रता की कथा है। महाभारत की कथा उस समय की कथा नहीं, आज की भी प्रवृत्तियों की ये कथा है।
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की,
आरती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की,
असुर जन धर्म नाश तारी,
असुर जन धर्म नाश
धरा पर संकट अति भारी,
धरा पर संकट अति भारी,
प्रजा संकट हुई सारी,
प्रजा संकट हुई सारी,
दुष्ट संहारक के सब की चक्रधर योगेश्वर हरि की,
दुष्ट संहारक के
चक्रधर योगेश्वर हरि जी
आरती पार्वती की चक्रधर योगेश्वर
मन्युमय दुर्योधन पासी
मन्युमय दुर्योधन पासी
शकुनि धृतराष्ट्र कुटिल दमनि कर्ण दुःशासन भय चंदि पाप करु पूर्ण विनाशन की सकुधर योगेश्वर आरती पाठ सारथी सत्य योगेश्वर
गोपाल कृष्ण भगवान की।